डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट पुस्तक तुम्हें स्तुति सत्र चार स्तुति के लिए आह्वान 2024 टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट और स्तोत्र की दूसरी पुस्तक में ईश्वर की स्तुति पर उनकी शिक्षा है। यह प्रशंसा के आह्वान, प्रशंसा का कारण, प्रशंसा कैसे करें, प्रशंसा की सामग्री और प्रशंसा के स्थान पर सत्र संख्या चार है। स्तोत्रों की पुस्तक में स्तोत्र अध्याय 42 से 72 की पुस्तक दो में भगवान की स्तुति पर हमारी चौथी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। अतीत में हमारे तीन व्याख्यान हो चुके हैं। एक ने एक विहित संदर्भ के साथ शुरुआत की, बस पुस्तक दो को समग्र रूप से देखा और देखा कि पुस्तक दो के कई भजन विलाप के भजन हैं। उनमें से कई को दूसरा डेविडिक संग्रह कहा जाता है। पहला डेविडिक संग्रह पुस्तक एक अध्याय 1 से 41 में है और यह दूसरा संग्रह है। हमने यह भी देखा है कि इसे एलोहिस्टिक स्तोत्र कहा जाता है, क्योंकि कई बार ईश्वर के लिए एलोहिम को याहवे नाम के स्थान पर पसंद किया गया था जो पहले था। हमने भजन 14 की तुलना भजन 53 से की है, जो कि एलोहिस्टिक भजन की भिन्नता के साथ लगभग दोहराव है। हमने कोरह के पुत्रों को देखा और फिर कैसे कुछ भजन विभिन्न कैचवर्ड और इंटरटेक्स्टुअल रिश्तों के माध्यम से एक साथ जुड़ते हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर सामने लाया जाता है। 1980 के दशक में जेरी विल्सन नाम का एक व्यक्ति था जिसने भजनों के बीच इस अंतरपाठीय संबंध की शुरुआत की थी। यह शानदार था और इसने पिछले 40 वर्षों से भजन अध्ययन को प्रभावित किया है। फिर हम भजन के तीन पात्रों पर गए और हमने राजा भजनकार पर हमला किया जिस पर दुश्मन ने हमला किया था और जो राजा से गुहार लगाता है। तब राजा भजनहार को बचाता है और शत्रु का विनाश करता है। फिर पिछली बार हमारे सत्र तीन में हमने स्तुति की अनुष्ठानिक प्रकृति की धारणा विकसित की, जो मंदिर बलिदानों और उस प्रकार की चीजों और जुलूसों के संदर्भ में होती है। फिर हमने प्रशंसा के आधार के रूप में विलाप पर काम किया, क्योंकि हमारी पुस्तक दो स्तोत्र में से कई भजन विलाप हैं। वह विलाप ही प्रशंसा का आधार है। फिर हमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो थोड़ा अधिक पेचीदा था, प्रशंसा के आधार के रूप में निंदा। हम पिछली बार उस पर गए थे और फिर अब यह हमारा चौथा सत्र होगा। आज हमारे चौथे सत्र में आप देख सकते हैं कि जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह वास्तव में पुस्तक दो में वास्तविक प्रशंसा है। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं कि प्रशंसा करने का आह्वान किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रशंसा के आह्वान के ठीक बाद अक्सर प्रशंसा का एक कारण दिया जाता है। फिर हम यह देखेंगे कि किन वाद्य यंत्रों से, अपने शरीर के किन हिस्सों से और इसी तरह की चीजों से स्तुति की जाए। फिर प्रशंसा की सामग्री की जांच की जाएगी। फिर अंत में स्तुति का जो स्थान है उससे हम समापन करेंगे। फिर हम हमारी आधुनिक संस्कृति के लिए प्रशंसा के निहितार्थों पर एक नजर डालेंगे। तो हम अंत में उन निहितार्थों को देखेंगे, जैसे सभी चार प्रस्तुतियों को एक साथ चित्रित करना। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आइए प्रशंसा के आह्वान से निपटें। मूल रूप से प्रशंसा करने का आह्वान तब होता है जब एक भजन अक्सर शुरू में एक अनिवार्यता के साथ शुरू होता है। तो यह ऐसा होगा जैसे भगवान के लिए गाओ या भगवान के लिए चिल्लाओ, या यह अनिवार्य होगा जहां यह कहने के लिए एक आदेश होगा, भगवान की स्तुति में हमारे साथ शामिल हों। आमतौर पर अनिवार्य प्रकार या आदेश प्रकार के तरीके से प्रशंसा करने का यह आह्वान है। मैं बस एक को देखना चाहता हूं और बस इसे पढ़ूंगा। आज हम जो बहुत कुछ करने जा रहे हैं वह केवल प्रशंसा करने के आह्वान, प्रशंसा करने का कारण, प्रशंसा कैसे करें और कहां प्रशंसा करना है, इसका वर्णन करना है। हम इसे स्तोत्र की दूसरी पुस्तक से लिए गए एक पाठ से स्पष्ट करेंगे। तो स्तुति के लिए बुलाओ अध्याय 47 श्लोक 1, यह इस प्रकार है, ताली बजाओ तुम सभी राष्ट्रों, खुशी के नारे के साथ भगवान को चिल्लाओ। तो आप देखते हैं कि दो अनिवार्यताएं हैं ताली बजाओ। इसलिए ताली बजाना पूजा प्रक्रिया का हिस्सा था। हे सब राष्ट्रों, ताली बजाओ, खुशी से चिल्लाकर परमेश्वर का स्मरण करो। और इसलिए ताली बजाना और चिल्लाना और ये दो चीजें हैं। स्तुति के इस आह्वान में यह भजन 47 श्लोक 1 से शुरू होता है। कई बार प्रशंसा के लिए ये कॉल खुल जाएंगी। मुझे लगता है कि भजन 100, जैसा कि वे इसे कहते हैं, हर कोई प्रभु के लिए खुशी का शोर मचाता है। और स्तुति का यह आह्वान भजन 100 से है, लेकिन हम इसे भजन 47 में देखते हैं। दूसरा उदाहरण भजन 66:1 में लिया गया है। इसमें कहा गया है, हे सारी प्रियवी के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो। तो फिर चिल्लाने की यह धारणा, प्रभु को चिल्लाओ। तो यह दूसरा उदाहरण है। अब यहाँ यह अगला जो हमें मिला है वह अध्याय 67 श्लोक 3 से 5 तक आ रहा है। और मुझे यह प्रशंसा का आह्वान क्यों पसंद है, यह एक तरह से कहता है, क्या लोग यहाँ प्रशंसा कर सकते हैं। और फिर श्लोक 5 में यह समाप्त होता है, लोग प्रशंसा भी करें। और इसलिए यह एक समावेशन की तरह है, यह एक बुकेंडेड चीज है। वह शुरुआत करते हैं, लोग तारीफ करें। वह इस प्रकार की प्रशंसा के आह्वान के साथ समाप्त होता है। और यहाँ यह एक अच्छी बात है, यह कहता है भजन 67 श्लोक 3 से 5, हे परमेश्वर, लोग तेरी स्तुति करें, सारी जातियां तेरी स्तुति करें, राष्ट्र आनंदित हों और आनंद से गाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक राज्य देश के लोगों पर शासन करता है और पृथ्वी के राष्ट्रों का मार्गदर्शन करता है। सेला, ध्यानपूर्ण विराम। और फिर पद 5, हे परमेश्वर, लोग तेरी स्तुति करें, लोग तेरी स्तुति करें। और इसलिए आपको इस प्रकार की प्रशंसा मिली है, हो सकता है कि लोग इस प्रकार की प्रशंसा के आह्वान के साथ छंदों के इस समूह की शुरुआत और अंत की प्रशंसा करें। अब कभी कभी कोई भजनहार होता है जो अपनी प्रशंसा का स्ववर्णन करता है। और इसलिए भजन 71 श्लोक 6 में वह यह कहता है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आऊंगा और तेरे पराक्रमी कार्यों का प्रचार करूंगा, मैं केवल तुम्हारी ही धार्मिकता का प्रचार करूंगा। अब ध्यान दें कि यह प्रभु को चिल्लाने जैसा नहीं है, जैसे आप प्रभु को चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं। यह आत्मचिंतनशील है और यह आत्मवर्णनात्मक है। हे प्रभु, प्रभु, मैं आऊंगा और आपके पराक्रमी कार्यों का प्रचार करूंगा, मैं करूंगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्तुति के इस आह्वान का एक रूप है, जहां भजनकार स्वयं अपना आह्वान करता है, मैं प्रशंसा करूंगा। मैं इसे प्रशंसा की प्रतिबद्धता कहना चाहता हूं। और इसलिए वह वचन देता है कि मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। और इसलिए यह प्रशंसा के आह्वान से थोड़ा अलग है, लेकिन उसी तरह के सामान्य अर्थ क्षेत्र में, मैं आऊंगा और प्रशंसा की प्रतिबद्धता की घोषणा करूंगा। और फिर प्रशंसा की इस प्रतिबद्धता में हमारी अगली कविता में मैं यह करूंगा, यह उस चीज से जुड़ा है जिसे प्रशंसा का व्रत कहा जाता है। और कई बार ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि जो कोई भी लंबे समय से और कठिन परिस्थितियों में भगवान को जानता है, आप उसकी प्रशंसा करने की कसम खाते हैं। दूसरे शब्दों में, मेरा एक मित्र वियतनाम में था। वह एक पहाड़ी पर था और हर कोई गोली मारकर मारा जा रहा था। उसने अपना सिर कीचड़ में डाल दिया और बोला, हे भगवान, यदि आप मुझे यहां से निकाल देंगे तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और इसलिए इस तरह की बात जहां मुसीबत में पड़ा व्यक्ति अक्सर भगवान से प्रतिज्ञा करता है कि यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं यह करूंगा और ऐसा करूंगा। मैं भी इस प्रकार के संदर्भ में रहा हूं, विशेष रूप से अपने बेटे के साथ जो एक नौसैनिक था जब वह अफगानिस्तान में था, इराक में था, लेकिन विशेष रूप से अफगानिस्तान में जब वह लगातार 28 दिनों के लिए युद्ध से बाहर था। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरा बेटा जीवित लौट आए तो मैं उसकी स्तुति करूंगा। और सचमुच उसने ऐसा किया। तो स्तुति का यह व्रत अध्याय 61 श्लोक 5 से 8 तक, भजन 61 श्लोक 5 से 8 तक आता है। यह कहता है, हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी हैं। तूने मुझे अपने नाम के डरवैयों का निज भाग दिया है। राजा के जीवन के दिन पीढ़ी पीढ़ी तक और उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी तक बढ़ते जाएं। वह परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव सिंहासन पर विराजमान रहे। उसकी रक्षा के लिए अपना प्यार और वफादारी नियुक्त करें। तब मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। दूसरे शब्दों में, यदि तू इस राजा को दे और तू इस राजा को इस रीति से आशीष दे तो मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा और प्रतिदिन अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। और इसलिए यह स्तुति करने के इस व्रत की तरह है जो स्तुति करने की प्रतिबद्धता के समान है। हमने कहा, भगवन, तुम ऐसा करोगे तो मैं भविष्य में ऐसा करूंगा। और इसलिए स्तुति का वह व्रत राजा के संदर्भ में अध्याय 61 में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और फिर पुस्तक 2 के अंत में प्रशंसा। हमने लगभग सभी पुस्तकों के बारे में कहा। भजन में 5 पुस्तकें हैं, पेंटाटेच या टोरा में 5 पुस्तकें हैं। भजन 5 पुस्तकों में विभाजित है, आप जानते हैं, 1 से 41 तक, और हम 42 से 72 और फिर 73 से 89, 92 और वगैरह वगैरह पर विचार कर रहे हैं। अंत तक हमने कहा कि भजन आरंभ में अधिक विलाप से अंत में स्तुति की ओर बढ़ते हैं, और वास्तव में व्यक्तिगत भजनों में वही गति होती है। इनमें से प्रत्येक पुस्तक के अंत में, अध्याय 1 से 41 के अंत में और फिर अध्याय 42 से 72 के अंत में आपको यह प्रशंसा या हलेलुया मिलता है, जिसके बाद एक दोहरा आमीन मिलता है। आमीन और आमीन, एक दोहरा आमीन। उनमें से कुछ की तो वास्तव में दोहरी प्रशंसा है। तो यह एक दोहरा हालेलुजा है, जिसके बाद एक दोहरा आमीन है। और इसलिए यहाँ भजन 72 में हमारी पुस्तक में सुलेमान ने इस भजन 72 छंद 18 से 20 को समाप्त किया। इसराइल के परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो, जो अकेले ही अद्भुत कार्य करता है। फिर से स्तुति करो, यहाँ दोहरी प्रशंसा की नकल कर रहे हैं। उसके महिमामय नाम की सदा स्तुति होती रहे, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाए। आमीन और आमीन। वह पुस्तक 2 का अंत है। और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इससे यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थना समाप्त होती है। और इसलिए यह एक तरह से दूसरी पुस्तक है जिसे यहीं समाप्त किया जा रहा है, एक दोहरी प्रशंसा और फिर अंत में एक दोहरी आमीन। तो ये प्रशंसा के आह्वान हैं, ये प्रशंसा के आह्वान हैं। और अब हम आगे देखना चाहते हैं कि प्रशंसा का कारण क्या है। और जब हम केवल प्रशंसा के इस कारण का परिचय दे रहे हैं तो यह शब्द क्या है? वहां एक छोटा सा संबंधक शब्द है। और जब आप कुछ भाषाओं में काम करते हैं तो आपको एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि ये बड़े शब्द हों, बल्कि कई बार ये छोटे छोटे जोड़ने वाले शब्द पूर्वसर्ग और संयोजन होते हैं जो आपको बताते हैं कि कथा में क्या हो रहा है, यह कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। और इसलिए प्रशंसा के इस उद्देश्य में हम इससे शुरुआत करते हैं जिसे मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत इससे होती है, प्रशंसा करने का एक कारण यह बताना है कि आप भगवान की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। और यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका अनुवाद इस प्रकार किया जाएगा। यह कुंजी शब्द है। कुंजी वह शब्द है जिसका उपयोग के लिए या क्योंकि के लिए किया जाता है। इसका अनुवाद किसी भी तरह से किया जा सकता है। कुंजी क्योंकि, और फिर यह आपको प्रशंसा का एक कारण, एक तर्क देगा, और इसलिए इसे प्रशंसा का कारण कहा जाता है। कई बार प्रशंसा का कारण प्रशंसा के आह्वान के साथ चला जाता है। तो आपके पास भगवान की स्तुति करने, चिल्लाने का आह्वान है, और फिर क्यों? क्योंकि, और फिर यह बताता है कि क्यों। इसलिए हम इनमें से कुछ को पढ़ना चाहते हैं ताकि प्रशंसा का कारण बन सकें और इसे इस मुख्य खंड कुंजी के लिए या क्योंकि के साथ स्पष्ट कर सकें। तो अध्याय 47 श्लोक 1 और 2 में, जिसे हमने अभी पढ़ा है, यह कहता है, ताली बजाओ हे सभी राष्ट्रों, खुशी से चिल्लाकर परमेश्वर का स्मरण करो। आपकी प्रशंसा करने का आह्वान है। दो अनिवार्यताएं, चिल्लाओ और ताली बजाओ। और फिर अगला श्लोक कुंजी के लिए, परमप्रधान प्रभु के लिए कहता है, हम उसकी स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि वह अद्भुत है, एक महान राजा। ध्यान दें कि राजा का रूपक फिर से आ रहा है, सारी पृथ्वी पर एक महान राजा। यही प्रशंसा का कारण है। वह बहुत अच्छा है। वह सारी पृथ्वी पर महान राजा है। और इसलिए यह अध्याय 47 श्लोक 1 और 2 में एक उदाहरण है। स्तोत्र 57 छंद 8 या 9 और 10। वह इसे एक प्रकार से प्रशंसा की प्रतिबद्धता में कहता है। हे यहोवा, मैं राष्ट्रों के बीच तेरी स्तुति करूंगा। मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरे विषय में गाऊंगा। यह प्रशंसा की प्रतिबद्धता है। और वह प्रशंसा की प्रतिबद्धता का पालन कैसे करता है? यह मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि कुंजी, महान के लिए आपका प्यार स्वर्ग तक पहुंच रहा है। आपकी वफादारी आसमान तक पहुंचती है। और फिर वह आपकी प्रशंसा का कारण बताता है कि आपका प्रेम महान है। और फिर हमने YouTube पर ग्रेट इज योर लव के लिए मैट हॉफलैंड के गीत और संगीत में भजन 57 की एक सुंदर प्रस्तुति का उल्लेख किया। अब एक और उदाहरण के लिए, लेकिन यह थोड़ा पेचीदा है। कभी कभी हिब्रू को देखें और जब वे कविता लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कथा और कविता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यहां तक कि जब आप बाइबल को देखते हैं, जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं और अपनी उंगली नीचे रखते हैं और कहते हैं उत्पत्ति, तो आप पाते हैं कि आपकी बाइबल पाठ को कॉलम में स्कैन करती है और कॉलम पैराग्राफ में है, और आप देखते हैं और वे सभी अनुच्छेद नीचे हैं। एक अनुच्छेद के बाद दूसरा अनुच्छेद आता है और वे सभी हैं, मुझे कैसे कहना चाहिए, वे दोनों तरफ से उचित हैं। तो दूसरे शब्दों में आपके कथा स्तंभ वर्गाकार हैं और यह स्तंभ नीचे आता है, वे वर्गाकार हैं। प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्द, यह एक पंक्ति शुरू करता है, यह एक पंक्ति समाप्त करता है, और फिर यह पैराग्राफ में नीचे चला जाता है। कविता में कविता पैराग्राफों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि एकल पंक्तियों, कविता की एक पंक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। और इसलिए आपके पास मूल रूप से है, और यही अंतर है। और यदि आप अपनी बाइबल में देखते हैं, आप उत्पत्ति लेते हैं और खोलते हैं, तो आप उन्हें कॉलम में देखेंगे क्योंकि वह अनुच्छेदों में वर्णित है। यदि आप भजनों या अन्य स्थानों के कुछ भविष्य वक्ताओं, नीतिवचन अय्यूब पर जाएं और उन्हें कविता में लिखें, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति पंक्तियों में विभाजित है, और उस पंक्ति को तोड़ना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। कारक कविता हमारे पास एकल पंक्तियों में आती है, जो पंक्ति से स्ट्रोफ तक इसके निर्माण में एक साथ जुड़ जाती हैं। एक स्ट्रोफे एक काव्यात्मक अनुच्छेद की तरह है। और फिर वास्तव में कई बार जब रेखाएं आती हैं, तो रेखाएं उस प्रकार आती हैं जिसे वे बाइकोलन कहते हैं। कविता से हटने के लिए क्षमा करें, लेकिन दो पंक्तियां हैं। आमतौर पर हिब्रू कविता में कई बार दो पंक्तियां होती हैं जो या तो एक ही बात कहती हैं, एक तरह की समानार्थी समानता। यह इससे कहीं अधिक कहता है, या यह ऐसा कहेगा और बिल्कुल ऐसा नहीं, और वे विपरीत होंगे, और वे उन विरोधाभासी समानताओं को कहेंगे। तो जब वे कहते हैं कि यह क्या है और क्या है, यह है तो समानार्थी समानता है, वे एक ही दिशा में जा रहे हैं। और फिर जब वे द्विबृहदान्त्र को वापस स्विच करते हैं तो यह लेकिन वास्तव में यह नहीं। अर्थ धर्मियों के लिए ऐसा होता है, परंतु दुष्टों के लिए ऐसा होता है, और इसलिए धर्मी और दुष्ट इन विपरीत समानताओं की तुलना करेंगे जो नीतिवचनों में प्रमुख रूप से प्रमुख हैं। और फिर आपके पास कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो शब्दार्थ से नहीं जुड़ती हैं और उन्हें मूल रूप से सिंथेटिक समानता कहा जाता है। तो यह एबीसी है और फिर यह एबीसी के बजाय डीएफ है, एबीसी जहां दोहराव है। तो वैसे भी तो हमारे पास यहाँ जो है वह यह है कि कविता को छोटी चीजें पसंद हैं क्योंकि आपको उसे पकड़ना है। यह लगभग ट्विटर जैसा है। ठीक है, क्या आप लोग ट्विटर करते हैं? यदि आप उस रूपक का उपयोग कर रहे हैं तो मुझे खेद है, लेकिन यह बस मेरे दिमाग में आया, लेकिन यह बस है। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? आपको इतने सारे अक्षरों में कुछ लिखना होगा, और इसलिए कविता में क्या होता है कि प्रत्येक पंक्ति लगभग एक निश्चित लंबाई की होती है और पंक्तियां पंक्तिबद्ध हो जाती हैं। यदि आपने बहुत कविताएं लिखी हैं, तो आप जानते हैं कि पंक्तियां एक पंक्ति में होती हैं, हमेशा सटीक समय पर नहीं, और इसलिए कविता में जो होता है आपको अपने शब्दों में बहुत संक्षिप्त होना होगा। प्रत्येक शब्द को उसकी ध्वनि या उसके भाव के आधार पर चुना जाता है, और कविता में प्रत्येक शब्द वास्तव में महत्वपूर्ण है। जबकि कथा में, कथा इस व्याख्यान की तरह है जहां आप इधर उधर भटकते हैं और आप बातें करते रहते हैं, लेकिन कविता बहुत बहुत अच्छी तरह से गढ़ी गई है और प्रत्येक शब्द, ध्वनि और भाव एक अर्थ निभाते हैं, और इसलिए उनके पास अनावश्यक शब्द नहीं हैं, बहुत काटे गए, बहुत संक्षिप्त। यही वह शब्द है जो मैं चाहता हूँ, संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त। और इसलिए उदाहरण के लिए प्रशंसा के कारण में आमतौर पर आपके पास यह शब्द कुंजी होती है, क्योंकि, और फिर यह आपको कारण बताता है। लेकिन कभी कभी कविता के कारण वे शब्द को छोड़ देते हैं, और कभी कभी वे क्रिया को भी छोड़ देते हैं। वे इसे क्रिया गैपिंग कहते हैं। आप जिस क्रिया का उपयोग करते हैं वह पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति में गैप हो जाती है। वे क्रिया को दोहराते भी नहीं हैं क्योंकि वे मानते हैं कि आप जानते हैं कि इसे कैसे नीचे लाना है। लेकिन फिर भी अध्याय 66 श्लोक 8 से 9 में यह कहा गया है, हमारे परमेश्वर की स्तुति करो हे लोगों, उसकी स्तुति की ध्वनि सुनो। और फिर एनआईवी शब्द को छोड़ देता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह यही है क्योंकि उसने हमारे जीवन की रक्षा की है और हमारे पैरों को फिसलने से बचाया है। तुम उसकी स्तुति क्यों करते हो? उसकी प्रशंसा सुनने वालों की आवाज क्यों सुनी जानी चाहिए? क्योंकि उसने हमारे प्राणों की रक्षा की है और हमारे पैरों को फिसलने से बचाया है। इसलिए वहां कुंजी का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में इसमें कुंजी गायब है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कथा में निहित है। यही प्रशंसा का कारण है। इसलिए प्रशंसा के सभी कारणों के पास यह कुंजी नहीं होगी जो इसे ट्रिगर करती है। कभी कभी वे इसे केवल संक्षिप्तता के लिए और अन्य कारणों से शायद उचित हो छोड़ देंगे, अब अध्याय 66 श्लोक 12 वह कहता है, तू मनुष्यों को हमारे सिरों पर चढ़ने देता है। हम आग और पानी से गुजरे हैं, लेकिन तू हमें बहुतायत के स्थान पर ले आया। और इसलिए यहाँ वह वर्णनात्मक का उपयोग करके प्रशंसा का कारण बन रहा है। वह बता रहा है कि क्या हुआ, आपने पुरुषों को हमारे सिर पर चढ़ने दिया, हमें पीटा गया, हम आग और पानी से गुजरे। यह आग और पानी के मामले में कुछ कुछ जेम्स टेलर जैसा लगता है, लेकिन आप हमें बहुतायत की जगह पर ले आए और तब तुम्हें यह मुक्ति मिलती है। वे हमारे सिरों पर चढ़ गए, परंतु तूने हमें छुड़ाया। और इसलिए यह प्रशंसा का एक कारण दे रहा है, प्रशंसा का एक कारण फिर से बिना किसी कुंजी के। और फिर ऐसा बहुत बार होता है, और मैं बस इसे एक तरह की सुविधा देना चाहता हूं। भगवान ने एक की प्रार्थना सुन ली है, और जब भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं तो प्रतिक्रिया मूल रूप से भगवान की स्तुति करना होती है, और यह एक खूबसूरत चीज है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, परमेश्वर की स्तुति करो। और इसलिए यह अध्याय 66 श्लोक 19 से 20 में घटित होता है। आप देख सकते हैं कि इनमें से बहुत कुछ भजन 66 से आ रहा है, जो उन्हीं का भजन है। अंत में और अधिक प्रशंसा, तो हम 66 से 69, 70 के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं इस तरह की चीजें, क्योंकि भजन यही हैं। हमारी दूसरी पुस्तक बहुत सारे विलापों के साथ शुरू होती है और भगवान की स्तुति के साथ समाप्त होती है, परंतु अध्याय 66 श्लोक 19 और 20 में कहा गया है, परंतु परमेश्वर ने प्रार्थना में मेरी आवाज अवश्य सुनी और सुनी है। भगवान की स्तुति करो जिसने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया या मुझसे अपना प्रेम नहीं छीना। और इसलिए वहां एक सुंदर कथन है जिसमें मेरी प्रार्थना सुनने के लिए भगवान की स्तुति की गई है। सुनने से इसका अर्थ है उसकी प्रार्थना को सुनना और उसका उत्तर देना। और इसलिए प्रार्थना शामिल हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि प्रार्थना करता है, जैसे प्रार्थना करता है, और फिर वे भगवान की स्तुति करते हैं। मैं वहां शब्द ध्वनियों पर खेल रहा हूं, इसके बारे में खेद, ठीक है। और फिर मूलतः आखिरी वाला है, और यह एक दिलचस्प विचार है। और जैसे जैसे मैं इनकी और अधिक जांच करता हूं, स्तुति करने के लिए बुलाता हूं, प्रभु को चिल्लाता हूं क्योंकि वह अच्छा है, इस तरह की बात। इनमें से कई में मैंने पाया कि वास्तविक प्रशंसा के साथ ही प्रशंसा के कारण का मिश्रण हो गया है, तो प्रशंसा का यह कारण प्रशंसा ही बन जाता है। और इसलिए यह आपको केवल कारण नहीं बता रहा है, यह आपकी प्रशंसा कर रहा है और आपको कारण बता रहा है। यह तो प्रशंसा ही है, तो प्रशंसा के लिए कॉल और प्रशंसा के लिए कारण की इन दो श्रेणियों का मिश्रण है। कभी कभी वे एक में मिश्रित हो जाते हैं। वह भजन 63:3 में यह कहता है, क्योंकि तेरा प्रेम जीवन से भी उत्तम है। वह कह रहा है, हे भगवान, तू मुझसे प्रेम करता है। यह परमेश्वर के प्रति उनकी स्तुति का हिस्सा है। मेरे होंठ तेरी महिमा करेंगे, स्तुति का कारण बनेंगे। मैं जब तक जीवित रहूंगा आपकी स्तुति करता रहूंगा। और तेरे नाम पर मैं अपने हाथ उठाऊंगा। प्रशंसा करने की प्रतिबद्धता। मैं अपने हाथ ऊपर उठाऊंगा, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका प्यार जिंदगी से बेहतर है। और फिर यह कहना कि आपका प्यार जीवन से बेहतर है, वास्तव में प्रशंसा के कारण अपने आप में ईश्वर की प्रशंसा करना है। तो आपको सावधान रहना होगा। आप प्रशंसा के लिए कॉल और प्रशंसा के कारण के बीच ये संज्ञानात्मक अंतर बनाते हैं, और कभी कभी वे खूबसूरती से एक साथ मिश्रित हो जाते हैं, और प्रशंसा करने का कारण वास्तव में प्रशंसा ही है, और इसलिए यह एक तरह की बात है। मुझे नहीं पता, जब ये चीजें मिश्रित होती हैं तो यह एक साफ सुथरी चीज होती है। अब अगला, मैं जो करना चाहता हूँ वह विषयों को बदलना है। हमने प्रशंसा करने के लिए कॉल और इसके लिए या क्योंकि के साथ प्रशंसा करने का कारण देखा है, और प्रशंसा करने का आह्वान अनिवार्यता के साथ है, भगवान को चिल्ला। अब मैं यह देखना चाहूंगा कि लोग वास्तव में प्रशंसा कैसे करते हैं, स्तुति कैसे की जाती है, और इसलिए प्रशंसा कैसे करें, और ऐसा करने के लिए मैं उस पर गौर करना शुरू करना चाहता हूं जिसे मैं अंडरपिनिंग्स कहता हूं, प्रशंसा का आधार। और हम इस प्रस्तुति के अंत में इस पर वापस आएंगे। स्तुति का आधार ईश्वर की प्रसन्नता प्रतीत होती है। वह व्यक्ति ईश्वर में प्रसन्न रहता है, एक उत्साह है। मुझे उत्साह शब्द पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि यह इसे पकड़ लेता है। ईश्वर के लिए एक उत्साह है, और वह उत्साह ईश्वर की स्तुति में आगे बढ़ता है। इसे भजन 42:4 में देखा जा सकता है। यह ये बातें कहता है जो मुझे याद आती हैं जब मैं अपनी आत्मा को बाहर निकालता हूँ, कैसे मैं खुशी और धन्यवाद के नारे लगाते हुए भगवान के घर तक जुलूस का नेतृत्व करने वाली भीड़ के साथ जाता था। खुशी और धन्यवाद, भगवान में आनंद है, वह खुश है, वह खुश है। आप दाऊद को याद कर सकते हैं जब वह यरूशलेम में संदूक लाता है, अपनी पूरी ताकत के साथ प्रभु के सामने नाचता है और लोगों के साथ नाचता है, सभा और मंडली के साथ जश्न मनाता है, और अपनी पूरी ताकत से और उसके भीतर जो कुछ भी है उसके साथ भगवान की स्तुति करता है। वहाँ एक उल्लास है, और यह उल्लास केवल ईश्वर की स्तुति में ही व्यक्त किया जा सकता है, और ईश्वर में इस उत्साह का परिणाम ईश्वर की स्तुति है। हमने दिखाया कि भजन 42:43 एक जोड़ी थे। यह कहता है, तब मैं तेरी वेदी, परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर के पास, अपने आनंद और आनंद के पास जाऊंगा। और आपको ईश्वर में किसी व्यक्ति के आनंद और आनंद की यह धारणा मिलती है, और वास्तव में यह सब इसी के बारे में है। मुझे डर है कि हमारी संस्कृति में कभी कभी हम आनंद और खुशी से चूक जाते हैं। हम हर चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, इसका या उसका। हमारे पास ईश्वर में इस प्रचुर आनंद और आनंद की कमी है, और वह कहता है, हे मेरे आनंद, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजाकर तेरी स्तुति करूंगा। तो उल्लास का परिणाम तब व्यक्ति के हृदय में उमड़ता है जहां वे भगवान की स्तुति करते हैं। उन्हें बस इसे बोलना ही होगा क्योंकि वे बहुत आभारी हैं। धन्यवाद देना एक प्रकार से इस चीज का आधार है। वे परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी और आनंदित हैं, और वे इस प्रशंसा पर टूट पड़ते हैं। अब दूसरी बात, अब यह इसे एक अलग दिशा में ले जाता है। ईश्वर की स्तुति के लिए नैतिक पूर्वापेक्षाएं हैं। ईश्वर की स्तुति के लिए नैतिक पूर्वापेक्षाएं हैं, और मैं बस इनमें से कुछ छंदों को पढ़ना चाहता हूं क्योंकि इनमें से कुछ छंद यहां इस संदर्भ में काफी अभिव्यंजक हैं, और इसलिए मैं भजन 50:16-17 से शुरू करूंगा। यह कहता है, लेकिन दुष्टों के लिए भगवान कहते हैं, तुम्हें मेरे कानून सुनाने का क्या अधिकार है? तो भगवान इस पर आपत्ति करते हैं। आम तौर पर भगवान ऐसा करते हैं, ओ हाँ, मैं अपने लोगों को मेरे कानून का पाठ करना और दिन रात मेरे कानून पर ध्यान करना पसंद करता हूँ। भगवान को यह पसंद है। परंतु जब वह कहता है, परंतु जब दुष्ट मेरी व्यवस्था पढ़ते हैं तो वह कहता है, परंतु दुष्ट परमेश्वर कहता है, तुम्हें क्या अधिकार है कि मेरी व्यवस्था सुनाते व मेरी वाचा अपने होठों पर लेते। और क्योंकि वे दुष्ट हैं, परमेश्वर की वाचा को होठों पर लेना उल्लंघन है और इससे परमेश्वर का अपमान होता है। तुम मेरी शिक्षा से बैर रखते हो और मेरी बातें अपने पीछे फेंक देते हो। तो नैतिक पूर्वापेक्षाएं हैं। आप बस एक दुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकते हैं और कह सकते हैं, मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं और सब कुछ अच्छा है। नहीं, भगवान कहते हैं कि नैतिक पूर्वापेक्षाएं हैं। अध्याय 66, भजन 66, श्लोक 17 से 18 तक वापस। वह कहता है, मैंने अपने मुंह से उसे पुकारा, उसकी तारीफ मेरी जुबान पर थी। और फिर वह यह कहता है कि यदि मैं मन में पाप रखता तो प्रभु न सुनता। दूसरे शब्दों में स्तुति का एक भाग यह है कि वह प्रभु को पुकारना चाहता है। हमने भगवान से प्रार्थना की है और हमने भगवान से मदद मांगी है, और इसलिए मदद या मुक्ति या बचाव के लिए एक प्रकार का मानव से दैवीय अनुरोध किया गया है, और इसलिए वह प्रार्थना रही है। और अब स्तुति भी प्रभु के लिए एक जयकार है, ताकि वह जो किया है उसके प्रति आभारी प्रतिक्रिया में हमारी प्रशंसा सुन सके। परंतु वह कहता है, यदि मैं मन में पाप रखता तो प्रभु न सुनता। तो प्रशंसा बहरे कानों पर पड़ती है, क्योंकि हमारे पास प्रशंसा करने के लिए नैतिक आवश्यकताएं भी नहीं हैं। इसलिए धार्मिकता मूलतः आवश्यक है और दुष्टता अयोग्य ठहराती है। और इसलिए मुझे यहाँ नीचे एक और श्लोक देखने दीजिए, और शरीर के अंगों पर आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही करूँगा। यह कहता है कि धर्मी लोग प्रभु में आनंदित होंगे और उसकी शरण लेंगे। धर्मी आनंदित होकर परमेश्वर की शरण लेंगे, और सब सीधे मन वाले उसकी महिमा करेंगे और उसमें महिमा करेंगे। और इसलिए आप फिर से देखते हैं, धर्मी सच्चे दिल वाले वे ही हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो प्रशंसा करने के लिए ये नैतिक पूर्वापेक्षाएं हैं। ईश्वर में एक भावुक आनंद है, लेकिन साथ ही स्तुति करने की एक नैतिक शर्त भी है। अब हम यहाँ कुछ विशिष्टताओं में उतरने जा रहे हैं, और ये लगभग यांत्रिक चीजें हैं। आप भगवान की स्तुति कैसे करते हैं? मैं पहले शरीर को देखना चाहता हूँ, और यह शरीर, हमारा शरीर, हमारा मानव शरीर भगवान की स्तुति कैसे करता है? इसलिए मैं शरीर के अंगों को देखना चाहता हूँ। मैं शरीर के अंगों और शरीर के अंगों को कैसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रशंसा के इन सभी भजनों से गुजरा, इसमें शरीर के विशेष अंगों और प्रशंसा में उनकी भागीदारी का उल्लेख होता रहा। तो हमारे शरीर के अंग, सबसे पहले मैं भजन 71 श्लोक 23 और 24 से इस तरह से शुरुआत करना चाहता हूँ। भजन 71, 23 और 24 में भजनकार बूढ़ा है और उसे लग रहा है, हे भगवान, मुझे बुढ़ापे में मत छोड़ो। भजन 71 और फिर भजन 72, सुलेमान होगा जो महान राजा है, भजन 71 में इस लुप्त हो रहे चरित्र के जवाब में। फिर भजन 72 में ताकत, 1 किंग्स अध्याय 1 और 2 के समान, जहां डेविड कमजोर है और चीजें आगे बढ़ती हैं, अध्याय 3 में सोलोमन की ताकत के साथ इसी प्रकार की चाल। भजन 71 श्लोक 23 से 24 तक शरीर के अंगों की जांच यहां करें। जब मैं तेरी स्तुति गाऊंगा तब मेरे होंठ आनंद से चिल्ला उठेंगे। तो होंठ शामिल हैं। जब मैं तेरी स्तुति गाऊंगा तब मेरे होंठ आनंद से चिल्ला उठेंगे। मैं जो छुटकारा पा चुका हूं, अपनी जीभ से दिन भर तेरे धर्म और तेरे धर्म के कामों का वर्णन करूंगा। क्योंकि जो मुझे हानि पहुंचाना चाहते थे वे लज्जित और भ्रमित हो गए हैं। शत्रु को याद रखें, जो व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है उन्हें शर्म और भ्रम में डाल दिया गया है। उनके साथ कुछ बुरा हुआ, मेरी जीभ तेरे धर्म के कामों का वर्णन करेगी। दूसरे शब्दों में, भगवान, आपने मेरे साथ न्याय किया। तूने उस दुष्ट को दूर किया और इस प्रकार तूने मुझे छुड़ाया और मेरा उद्धार किया। इस कारण मेरी जीभ तेरे धर्ममय कामों का वर्णन करेगी। तो मेरे होंठ और मेरी जीभ उन शरीर के अंगों में शामिल हैं। अब इतना ही नहीं, भजन 51.15 में बतशेबा के साथ अपने पाप के बाद दाऊद का महान पश्चाताप भजन, वह कहता है, हे भगवान, मेरे होंठ खोलो, फिर से शामिल होठों और मेरे मुंह पर ध्यान दें, इस बार जीभ नहीं बल्कि मुंह। और आप देख सकते हैं कि ये हैं, मुझे कैसे कहना चाहिए, वे शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वे लगभग वही हैं जिन्हें वे सिनेक्डोचेस या मेटोनिम्स कहते हैं, जो मूल रूप से किसी व्यक्ति के शरीर के उस हिस्से को दे रहे हैं जो वास्तव में इसे व्यक्त करता है। वे जो कर रहे हैं वह अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वे डेक पर मौजूद सभी लोगों की तरह सिर्फ एक सिनेक्डोचे का उपयोग कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि सभी लोग डेक पर हैं, तो आपका मतलब यह नहीं है कि हर कोई डेक पर अपना हाथ रखे। आपका मतलब डेक पर मौजूद सभी लोगों से है, वे सभी व्यक्ति जो नाव पर काम कर रहे हैं या डेक पर जो भी हो। तो वैसे भी वह कहता है, हे प्रभु, मेरे होंठ खोलो और मेरा मुंह तेरी स्तुति का वर्णन करेगा। और यह वह है जो प्रशंसा की घोषणा कर रहा है, लेकिन यह वहां मुंह और होठों का उपयोग कर रहा है। अब यहां एक और है जो काफी दिलचस्प है, अपने हाथ से ताली बजाएं। इसलिए जब हम इसे पहले ही भजन 47.1 में पढ़ चुके हैं, तो हे सभी राष्ट्रों, ताली बजाओ, खुशी से चिल्लाओ। तो आपके पास हाथों की ताली और चिल्लाहट है। मेरा मतलब है, यह प्रशंसा के लिए काफी हंगामा है। जिन लेखकों को मैं पढ़ रहा था, उनमें से एक ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि प्रशंसा बहुत शोरगुल वाली होती है, स्तुति बहुत शोरगुल वाली होती है। तुम ताली बजा रहे हो, तुम भगवान को चिल्ला रहे हो। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो एक बहुत ही सख्त चर्च में गया जहां सब कुछ शांत था। और जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने बस यही किया कि आपको चर्च में शांत रहना होगा, आपको चर्च में शांत रहना होगा। और इसलिए तब आपने तब तक इंतजार किया जब तक आप अपने माता पिता से दूर नहीं हो गए। तो आप अपनी सीट पर इधर उधर छटपटा सकते हैं और थोड़ा शोर कर सकते हैं, लेकिन यहां आप देखते हैं कि ताली बजाना और भगवान को चिल्लाना, यह एक शोर शराबा है। स्तुति वास्तव में शोर है, यह स्फूर्तिदायक है, यह लगभग वैसा ही है, मुझे यह कहने से नफरत है, यह एक भयानक रूपक है, मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन मैं और मेरी पत्नी वहां गए, वहां एक स्कूल है जिसके ये लोग दीवाने हैं। अब ये लोग वैद हैं। बेहतर होगा कि मैं इसे टेप पर न कहूं, लेकिन फिर भी मैं ओहायो राज्य के एक खेल में गया था। मेरा बेटा वहां के कुछ लैक्रोस में शामिल था और मेरा पोता और ओहियो स्टेट गेम, ये लोग अपने दिमाग से बाहर हैं। ये लोग पूरे खेल के दौरान ओहायो राज्य को जिताने के लिए चिल्लाते रहे और बगल के लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे इन लोगों से कहते रहे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वे बैठ नहीं सके। वे वहां अपनी टीम को जिताने के लिए चिल्ला रहे हैं। और पूरे खेल के दौरान हमने पूरा खेल खड़े होकर किया, क्योंकि आप उन्हें चुप नहीं करा सकते थे, आप उन्हें बैठा नहीं सकते थे। वे ओहायो राज्य के लिए बहुत उत्साहित थे। ये लोग पागल हैं। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि शायद हमें भगवान के लिए इसी तरह पागल होना चाहिए। हां, यह सचमुच ठीक होगा। उस रूपक के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? वह उत्साह जो चिल्लाने, ताली बजाने और चीजों में प्रकट होता है, और इसलिए वह कहते हैं, ताली बजाओ और खुशी से चिल्लाकर भगवान को पुकारो। भजन 63 छंद 4 और 5 में, मैं जब तक जीवित हूँ आपकी स्तुति करूँगा और तेरे नाम पर मैं अपने हाथ उठाऊंगा। और इसलिए यह परमेश्वर की ओर हाथ उठाना और स्तुति करना है। मेरी आत्मा गरिष्ठ भोजन से तृप्त हो जाएगी और मेरे मुख से गाते हुए तेरी स्तुति होगी। और इसलिए ये उठे हुए हाथ और गायन और परमेश्वर की स्तुति। जब मैं ऊंचे हाथों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ जो गॉर्डन कॉलेज में काम करता है, जहाँ मैं काम करता हूँ। वह यहाँ नियंत्रक है और मुझे लगता है कि वह सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है, जिसका मतलब है कि वह शायद कुछ और करने जा रहा है। लेकिन उसका नाम माइक अहर्न है और मैं उस आदमी की प्रशंसा करता हूँ। और मैंने उसे चर्च सेवाओं में देखा है और मैं इस पार्क स्ट्रीट चर्च में उसके सामने बैठता हूँ। और जब वह स्तुति करने जाता है, यार, जब भी वह प्रार्थना करता है तो यह सिर्फ एक जूम होता है, उसके हाथ ऊपर उठ जाते हैं। और वह यह करता है कि मैं माइक को उस पार देखता हूँ और उसके हाथ ऊपर उठ जाते हैं। यह सोचकर मेरी आत्मा उत्साहित हो जाती है कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हाथ उठाकर प्रार्थना करना एक सुंदर प्रतीक है। क्या आपको याद है कि मूसा ने अपने हाथ उठाकर अमालेकियों पर विजय प्राप्त की थी? तो ठीक है, इस प्रकार की चीजों की प्रशंसा कैसे करें? अब हमने मुंह, होठ, जीभ, हाथ, ताली, चिल्लाना सब देख लिया है। और अब मैं जो देखना चाहता हूँ वह प्रशंसा के उपकरण हैं। हाँ, अब उन्हें केवल शरीर के अंगों से भी आगे बढ़कर प्रशंसा के साधन मिल गए हैं। अब हम दो चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं और मैं विवरण में नहीं जाना चाहता। वीणा दो प्रकार की होती है। मैं वीणा बजाने में रुचि नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी, और अब मैं इस पर वीणा बजाने जा रहा हूँ। लेकिन वैसे भी नाभि एक प्रकार की वीणा है और किन्नर दूसरी प्रकार की वीणा है। अब किन्नर, हम जानते हैं कि किन्नरेट से गलील का सागर है, अत गलील का सागर वीणा के समान है, और इसलिए उन्होंने वास्तव में इसे वीणा जैसी समुद्री चीज किन्नोर कहा। और जो होता है वह मुझे नाभि वीणा के साथ कहना है, इसलिए उनका दो अलग अलग तरीकों से अनुवाद किया जाता है। अब आप सावधान हो सकते हैं। हर किसी को वीणा और वीणा का अनुवाद न करने दें, क्योंकि वे दो अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो जो वीणा है वही बड़ा है, और यह मूल रूप से है। मुझे बस इसे यहां रखने दीजिए। एक तस्वीर हजारों शब्द बचाती है, और इसलिए यहां आप वीणा देखते हैं और आप देखते हैं कि उसकी एक भुजा है, एक ही हाथ है। यह एक वीणा है। वे आम तौर पर वीणा होती हैं या नाभि किन्नोर से बड़ी होती है, किन्नर छोटा होता है। वैसे ये दोनों खड़ी वीणाएं नहीं हैं, जैसे आप आज किसी वीणा वादक को इस विशाल वाद्य यंत्र के साथ देखते हैं जिसका वजन कई सौ पाउंड होता है। ये चीजें लोग ले गए थे, और हमें प्राचीन निकट पूर्वी दुनिया में असीरिया और अन्य स्थानों से तस्वीरें मिली हैं जहां इन्हें ले जाया जाता है, और हम वास्तव में उन्हें लोगों के हाथों में देख सकते हैं। लेकिन यह बड़ा है, यह बड़ा है। और वास्तव में कई बार लोग सोचते हैं कि इस एक भुजा से नीचे साउंडिंग बॉक्स तक और भी तार हैं। तो क्या आपने देखा कि साउंडिंग बॉक्स एक कोण पर कैसे आता है? यह एक वीणा है, बड़ी। यह बड़ा है, बड़ा है, लेकिन फिर भी इसे ले जाया जा सकता है। लेकिन इसमें अधिक तार हैं और नीचे एक बड़े साउंडिंग बॉक्स के साथ एक भुजा है और यह 12 तारों पर है। जब वे चल रहे होते हैं तो वे दोनों बजाते हैं। मुझे बस एक कविता पढ़ने दीजिए जो इसे सामने लाती है। भजन 71 श्लोक 22 से 24 तक कहता है, मैं वीणा और नाभि बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी सच्चाई के कारण वीणा बजाकर तेरी स्तुति करूंगा। अरे बाप रे, मैं वीणा बजाते हुए तेरा भजन गाऊंगा। वह किन्नर है, हे इसराइल के पवित्र। तो आप देखिए कि ये दो पर्यायवाची समानताएं हैं। मैं वीणा बजाकर तेरी स्तुति करूंगा, और तो और मैं वीणा बजाकर तेरी स्तुति करूंगा, और इसलिए वे दोनों एक ही दिशा में जाते हैं और यही हिब्रू कविता है। वे द्विबृहदान्त्र में आते हैं, दो पंक्तियां इस प्रकार दोहराई जाती हैं। एक कहता है एबीसी और दूसरा कहता है और क्या है ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम। इसलिए मैं नाभि और तेरी सच्चाई के लिए वीणा बजाकर तेरी स्तुति करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, हे इसराइल के पवित्र, मैं वीणा व किन्नोर बजाकर तेरी स्तुति करूंगा। मेरे होठों, मुझे बस पढ़ने दो, क्योंकि यह उस पर फिट बैठता है जो हम पहले कर रहे थे। जब मैं जिसे तूने छुड़ा लिया है तेरी स्तुति गाऊंगा, तो मेरे होंठ आनंद से जय जयकार करेंगे। मेरी जीभ दिन भर तेरे धर्म के कामों का वर्णन करती रहेगी, क्योंकि जो मेरी हानि करना चाहते थे वे लज्जित और व्याकुल हो गए हैं। तो वह है आंतरिक भाग नाभि। आप एक हाथ और उस जैसी चीजें देख सकते हैं। क्या आप देखते हैं, किन्नर अधिक पसंद है और यह संभवतः गरीब लोगों के लिए अधिक है। उदाहरण के लिए, चरवाहा लड़का डेविड एक किन्नर की भूमिका निभाएगा। क्या आप देख रहे हैं कि यहां दो भुजाएं हैं? इसकी दो भुजाएं हैं और यह साउंडिंग बोर्ड के सामने आता है, लगभग एक गिटार की तरह, लेकिन दो भुजाएं हैं। और फिर आप इस बार को यहां ऊपर देखते हैं, तो इसकी दो भुजाएं हैं जिनके पार एक पट्टी है। वह किन्नर है। और अगर आप इसे थोड़ा सा देखें, वैसे भी यह थोड़ा थोड़ा गलील सागर किन्नोर जैसा दिखता है, इसलिए यह अधिक लोकप्रिय है। जाहिर है यह अधिक महंगा है और अधिक अनुष्ठानिक राजा होगा, इस तरह की चीजें। यह इसे ले जाने वाला अधिक चरवाहा लड़का होगा। आप देख सकते हैं कि आप इसे कैसे ले जा सकते हैं और आप इसे लगभग अपने बैकपैक जैसी चीज में फेंक सकते हैं। और ये किन्नर है, और इसलिए इसका भी वहां उल्लेख किया गया है, और इसलिए वे दोनों समानांतर हैं, वीणा और किन्नर दोनों ले जाने योग्य हैं। एक हाथ और दो हाथ उस पर कमतार हैं। अब मैं उपयोग किए जाने वाले अगले उपकरण पर जाता हूं। अगला साधन यह अध्याय 47 श्लोक 5 में कहता है, भजन 47 5 कहता है, भगवान खुशी के नारे के बीच चढ़ गए हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यह लगभग स्वर्ग जैसा है। क्या स्वर्ग में जय जयकार होने वाली है? वैसे भी भगवान खुशी के नारों के बीच, भगवान तुरही की आवाज के बीच, तुरही की आवाज के बीच चढ़ गए हैं। और इसलिए जब मैं छोटा था, मैं और मेरा भाई तुरही बजाते थे और हम हिल्डेब्रांट जोड़ी की तरह थे युगल, और हम अपनी तुरही बजाएंगे। वे पीतल की तुरही हैं, वे तुरही वगैरह बजाते हैं। यह वह नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। इसे शॉफर कहा जाता है और वास्तव में मुझे इसे टेप करने वाले व्यक्ति के रूप में मार्को को लेना चाहिए था। मैं उनकी टेपिंग के लिए बहुत आभारी हूं। वह इनमें से एक चीज का मालिक है। वे सुंदर हैं। मुझे उसे इसे अंदर लाना चाहिए था। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन यह एक मेढ़े का सींग है। यह एक मेढ़े का सींग है। जब हम इज़राइल में थे तो मैं जिन्हें खरीदना चाह रहा था, मैं और मेरी पत्नी, मैं कैसे कहूँ, उस समय गरीबी से जूझ रहे थे। वहाँ एक की कीमत लगभग 125 रुपए थी और उसकी कीमत भी लगभग इतनी ही थी। और जो जितने बड़े होते हैं वे उतने ही अधिक उसी प्रकार चलते हैं और उनमें ये मोड़ होते हैं। और जितने अधिक ट्विस्ट, मेरा मतलब है, उनमें से कुछ वास्तव में $250 के लिए अच्छे हैं। उन दिनों हमारे नाम के लिए दो क्वार्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी सुंदर। वहाँ एक शोफर है, यह एक राम का सींग है और वे इस ध्वनि को बजाते हैं और यह निकलती है और इसे तुरही कहा जाता है। कई बार जब वे इन तुरही को बजाते हैं तो यह लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक ध्वनि की तरह होती है और वे तुरही बजाते हैं। जब मैं छोटा था मैं तुरही बजाता था। मैंने चाइल्ड ऑफ इवेंजेलिज्म फेलोशिप के लिए काम किया। इंजीलवाद फेलोशिप के बच्चे, हमने छोटे बच्चों के साथ काम किया। श्रीमती स्टीनबरिंग, यह नियाग्रा फॉल्स में है। वह एक तरह की बुजुर्ग महिला थी जो इन सभी बच्चों के साथ चाइल्ड ऑफ इंजीलिज्म फेलोशिप के साथ घूमती थी। तो मैं क्या करूंगा, क्या आपको वो छोटे छोटे याद हैं? उनके पास ये ट्रक हुआ करते थे जिनमें ये डिंग 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 डोंग गाने होते थे और इसका मतलब था कि आइसक्रीम का ट्रक आ रहा था और पड़ोस के सभी बच्चे आइसक्रीम खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। वे शायद अब अवैध हैं, लेकिन वैसे भी यह तब की बात है जब मैं बच्चा था। उनके पास ये ट्रक थे जो आवाज करते हुए घूमते थे। तो मैंने जो किया वह यह है कि मैं अपनी तुरही के साथ बाहर जाऊंगा और इसमें तुरही की ध्वनि बजाऊंगा। यार, इसे क्या कहा जाता था? यह लासेल नियाग्रा फॉल्स में एक यहूदी बस्ती थी और मूलतः सार्वजनिक आवास से ये सभी बच्चे भागते हुए बाहर आएंगे। वे तुरही सुनेंगे और फिर श्रीमती स्टीनबरिंग चाइल्ड ऑफ इवेंजेलिज्म फेलोशिप के लिए एक प्रस्तुति देंगी। और वैसे भी तुरही एक तरह से एकत्रित होना, तुरही बजाना युद्ध की चेतावनी। कई बार इनका उपयोग युद्ध की चेतावनी के लिए किया जाता है, लगभग सायरन की तरह। मेरा मतलब है, ठीक है, शायद मुझे इसके कुछ रूपक पसंद नहीं हैं, लेकिन इसके निहितार्थ पसंद नहीं हैं। परंतु फिर भी तुरही का बजना, मंडली में लोगों का जमा होना, तुरही के साथ जय जयकार, शोफर, मेढ़े का सीन। फिर यहाँ अंतिम है टिम्ब्रेल या डफ, और इसलिए वे वहाँ डफों के साथ हैं और यह मूल रूप से कहता है सामने गायक हैं। यह भजन 68 श्लोक 25 में जुलूस का वर्णन कर रहा है। इसमें कहा गया है, गायकों के आगे, उनके बाद संगीतकार, उनके साथ डफ बजाती हुई युवतियां हैं। और इसलिए आपको तुरही के साथ, वीणा के साथ, वीणा के साथ और तुरही के साथ, शोफर के साथ इस प्रकार की तंबूरा जैसी चीज मिलती है। और इसलिए ये स्तुति के साधन हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने पास मौजूद संगीत वाद्य यंत्र ले लिए और वे उन वाद्य यंत्रों का उपयोग भगवान की स्तुति करने के लिए करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास आधुनिक वाद्य यंत्र, गिटार और अन्य चीजें हैं और हमें उन वाद्य यंत्रों का उपयोग भगवान की स्तुति करने के लिए करना चाहिए। सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के उपकरण, और ध्यान दें कि गायन इन सबके साथ चलता है। मैंने वास्तव में गायन की अवधारणा विकसित नहीं की है, मैंने बस यही सोचा। मुझे वास्तव में इस पर विस्तार करना चाहिए कि इसमें कितनी बार उल्लेख है कि हम भगवान के लिए गीत गाते हैं। और इसलिए यह संगीत के साथ है और संगीत हमारी आत्मा को उस तरह से छूने में सक्षम है जिस तरह अन्य चीजें नहीं कर सकती। मैं बस इतना कहता हूँ मेरी सास को अल्जाइमर या डिमेंशिया है और वह लगभग 15 वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित हैं। और इसलिए वह परिवार में किसी को नहीं पहचानती। वह मेरी पत्नी को नहीं पहचानती जो उसकी बेटी है। शायद मैं ये कहना भी नहीं चाहता था। इसका बहुत समय हो गया। हालांकि आप गाना बजाते हैं कि आप कितने महान हैं। क्या किसी को बिली ग्राहम याद है? आप कितने महान हैं? आप वह गाना बजाते हैं या आप अमेजिंग ग्रेस और दादी का किरदार निभाते हैं जो अपने परिवार में किसी को भी याद नहीं कर पाती, यहां तक कि अपने पति को भी जो अब गुजर चुका है। वह किसी को याद नहीं कर सकती। आप हाउ ग्रेट यू आर्ट खेलते हैं और वह इसमें शामिल है। आप अमेजिंग ग्रेस का किरदार निभाते हैं और वह इसमें शामिल है। कभी कभी तो उसके चेहरे पर आंसू भी आ जाते हैं। और यह बस यह सुंदर है। यह गाना हमारी आत्मा में इतनी गहराई तक उतर जाता है कि मनोभ्रंश भी इससे छुटकारा नहीं पा पाता। यह बहुत गहरा है और मैंने इसे देखा है। जैसा कि हमने कहा, जब लोग गाने बजाते हैं तो यह उनकी आत्मा को छू जाता है, खासकर जब वे मृत्यु और उस जैसी अन्य चीजों के करीब पहुंचते हैं। यदि आप कभी ऐसे लोगों के आसपास रहे हैं जो मृत्यु के कगार पर हैं और वे जानते हैं कि वे मरने वाले हैं, तो कई बार वे पूछेंगे, मेरा एक दोस्त है जो गाता है और वह अपने पिता के लिए गाता है और वह भजन की किताब लाता है, और जब उसके पिता की मृत्यु करीब आती है तो वह टेलीफोन पर अपने पिता के लिए गाता है। तो संगीत गाओ और गाओ, प्रशंसा के गीत गाओ। मैंने इसे विशेष रूप से विकसित नहीं किया है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है। यहां गाना और चिल्लाना है। मुझे लगता है कि हमने कम से कम यहां ऐसा किया है। और यह हम फिर से प्रशंसा करने जा रहे हैं। और हम यहां केवल संक्षेप में गाने और चिल्लाने का उल्लेख करने जा रहे हैं। हम पहले ही चिल्लाने और उस जैसी चीजों का उल्लेख कर चुके हैं। मुझे इनमें से कुछ चीजें पढ़ने दीजिए। और एक कारण है कि मैं इसे क्यों लाना चाहता हूं। भजन 65, वास्तव में मुझे एक नीचे जाने दो। हाँ, ठीक है। स्तोत्र 65 श्लोक 13 कहता है, घास के मैदान भेड़बकरियों से ढके हुए हैं, घाटियां अनाज से पटी हुई हैं। तो आपको पहाड़ियां मिलती हैं, घास के मैदान भेड़बकरियों से ढके हुए हैं और घाटियां अनाज से ढंकी हुई हैं। वे खुशी से चिल्लाते हैं और गाते हैं। कौन गाता है? घास के मैदान और घाटियां। कहा जाता है कि घास के मैदान और घाटियां मानवकृत हैं। मीडोज गा नहीं सकते। वे वही हैं जहां झुंड हैं। घाटियां गा नहीं सकती। वही अनाज उगाया जाता है, लेकिन फिर भी वे गाते हैं। इसमें कहा गया है कि वे खुशी के लिए चिल्लाते हैं और गाते हैं। हमने इसे पहले कहां देखा है? जहां प्रकृति के मूल तत्व ही ईश्वर की जय जयकार और ईश्वर की स्तुति के रूप में देखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य अपने मुंह, अपने होठों, अपनी जीभ का उपयोग करते हैं और हम हाथ ऊपर करके या ताली बजाकर ईश्वर को पुकारते हैं। मनुष्य के रूप में हम यही करते हैं। हम सजीव हैं, लेकिन निर्जीव संसार, घास के मैदान और घाटियां भी ईश्वर को चिल्ला रही हैं, ईश्वर की स्तुति कर रही हैं। यह मुझे एक तरह से याद दिलाता है, क्या आपको यीशु का आना और ल्यूक अध्याय 19 याद है? और लोग कहते हैं, क्या तुम सुनते हो कि ये छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं? अगर ये लोग शांत होते तो चट्टाने भी चिल्ला उठती। और यीशु ने कहा, चट्टाने भी चिल्लाएंगी और जाहिर तौर पर प्रकृति भी चिल्लाएगी। याद रखें कि कैसे रोमियो 8 में यह कहा गया है, सारी सृष्टि कराह रही है, आने वाले दिन की प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ तक कि स्पष्टतः सृष्टि स्वयं को ईश्वर की स्तुति में अभिव्यक्त करती है। और हम मनुष्य के रूप में तब निर्जीव वस्तुओं के इस प्रकार के मानवीकरण में शामिल हो सकते हैं कि हम सभी लोगों को अपनी प्रशंसा में और अधिक स्पष्ट होना चाहिए। घाटियों और पहाड़ियों की नाई वे पाप के कारण कराहते हैं। हमें यीशु मसीह से मुक्ति और स्वतंत्रता, निर्गमन वगैरह मिला है। हमें परमेश्वर की और भी अधिक स्तुति करनी चाहिए। तो प्रशंसा कैसे करें, मानवीकरण और फिर उत्सव का उत्सव, यह प्रशंसा करने का एक और तरीका है कि ये चीजें समुदाय में की जाती हैं। और इसलिए यह भजन 68 छंद 24 से 26 में कहता है, हे भगवान, तेरा जुलूस सामने आ गया है। मेरे भगवान और राजा का जुलूस गायकों के सामने अभयारण्य में है, उनके पीछे संगीतकार और उनके साथ युवतियां खेल रही हैं डफ। बड़ी सभा में परमेश्वर की स्तुति करो, इसराइल की सभा में यहोवा की स्तुति करो। और इसलिए आपको यह धारणा मिलती है, क्या आप कभी ऐसे स्टेडियम के आसपास रहे हैं जहां 100,000 लोग हैं और वे सभी अपनी टीम के लिए चिल्ला रहे हैं और आप उसके बाहर हैं और आप इसे वास्तव में मीलों तक सुन सकते हैं और आप यह गड़गड़ाहट की आवाज सुन सकते हैं। और इसलिए यहां आपको यह विचार मिलता है कि वे बड़ी मंडली में एक साथ इकट्ठे हुए हैं और वे भगवान को चिल्ला रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और यह उद्दाम है, यह बाहर जाता है और आप इसे इज़राइल की सभा में सुन सकते हैं। भीड़ का उत्सव आ रहा है, मंडली में जुलूस आ रहा है। और इसलिए इस प्रकार का व्यवस्थित जुलूस होता है जिसके द्वारा ऐसा होता है। तो स्तुति कैसे करें, और फिर हम बड़ी मंडली की ओर बढ़ते हैं जैसा कि हम अभी देख रहे थे, और बड़ी मंडली पवित्र स्थान में। और इसलिए भजन 68 पद 26, बड़ी सभा में परमेश्वर की स्तुति करो, इसराइल की सभा में यहोवा की स्तुति करो। ठीक है, और ठीक है अभयारण्य की ओर आगे बढ़े। यह कहता है, जिनके साथ मैंने एक बार मीठी संगति का आनंद लिया था जब हम भगवान के घर में भीड़ के साथ चल रहे थे। तो यह आदमी जीवन पर विचार कर रहा है और वह कह रहा है, मुझे वे जुलूस याद हैं। मुझे याद है कि मैं भगवान के घर गया था और अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और भगवान की स्तुति कर रहा था जब हम उस मधुर संगति में शामिल हो गए थे। जब हम भगवान के घर गए थे, भगवान का घर अभयारण्य है। अब तारीफ कैसे करें? वहां केवल गाना और चिल्लाना, वाद्ययंत्र बजाना और बड़ी मंडली का एकत्र होना और इस तरह की चीजें ही नहीं हैं। लेकिन बताने की भी एक धारणा है, और यह मेरे जैसे लोगों के लिए है जो बहुत अच्छा नहीं गा सकते। और इसलिए प्रशंसा का वास्तविक वर्णन या घोषणा है। तो यह अधिक स्पष्ट प्रकार की चीज है। अध्याय 71 श्लोक 15 से 18 तक यह कहता है, मैं दिन भर तेरे धर्म का और तेरे उद्धार का वर्णन करता रहूंगा, यद्यपि मैं उसका माप नहीं जानता। हे प्रभु प्रभु, मैं आऊंगा और आपके पराक्रमी कार्यों का प्रचार करूंगा। मैं केवल तुम्हारी ही धार्मिकता का प्रचार करूंगा। और इसलिए वह अब कह रहा है, मेरा मुंह बताने जा रहा है, मैं लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपने क्या किया है। आपने जो किया है, मैं उसकी घोषणा करने जा रहा हूं, आपकी धार्मिकता, केवल आपकी। मेरी जवानी से, हे भगवान, तूने मुझे सिखाया है और मैं आज तक तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूं। तो प्रशंसा क्या है? यह परमेश्वर के पराक्रमी कार्यों की घोषणा है। किसी के जीवन में परमेश्वर के पराक्रमी कार्य के बारे में बताना है। यहां तक कि जब मैं बूढ़ा और भूरे रंग का हो जाऊं, तब भी याद रखें कि यह भजन 71 है। हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा और सफेद हो जाऊं, तब भी मुझे मत त्यागना, जब तक मैं अगली पीढ़ी को तेरी शक्ति का और आने वाले सब लोगों को तेरी शक्ति का वर्णन न कर दूं। और इसलिए जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो यह दृष्टिकोण होता है कि वृद्ध व्यक्ति के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि उन्होंने भगवान के इन शक्तिशाली कार्यों को देखा है और वे अगली पीढ़ी को भगवान के इन शक्तिशाली कार्यों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने देखे थे। मेरे एक पिता थे और मेरी माँ ने मुझे मेरे पिता की कहानी सुनाई। और जब उसने परमेश्वर के महान कार्य को देखा तो वह बाहर हो गया और वह एक युवा समूह प्रायोजक था। वे बकहॉर्न स्टेट पार्क से गुजर रहे थे और वहां एक दलदल था। दलदल संभवतः 50 से 100 एकड़ का है। यह 50 से अधिक है, यह 100 एकड़ से भी अधिक है, सभी झाड़ियों और नरकटों के साथ एक विशाल दलदल। तो मेरे पिता इन बच्चों को इस दलदल से पार कराना चाहेंगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखा था। तो अचानक यह कॉन्टैक्ट लेंस नेटली उसका कॉन्टैक्ट लेंस दलदल में गिर जाता है। यह पवित्र गाय की तरह है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जब चीजें दलदल में नीचे चली जाती हैं, तो आप नीचे जाकर यह नहीं देखना चाहते कि आपके पैर कहाँ हैं। और इसलिए यह बाहर आ जाता है, वे इसकी तलाश करते हैं, लेकिन वे इसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो अंधेरा होने लगा है। आप वहां अंधेरे में नहीं रहना चाहेंगे। और इसलिए मेरे पिताजी को एहसास हुआ कि अंधेरा हो रहा है। उन्होंने नेट से कहा, वैसे ये चीजें थीं, मुझे नहीं पता कि अब वे क्या हैं। वे शायद अब सस्ते हैं, लेकिन उन दिनों वे बहुत महंगे थे, कम से कम कुछ 100 रुपए। तो नेट का संपर्क सामने आया और मेरे पिता ने कहा, ठीक है, अंधेरा हो रहा है, हम इसे ढूंढ नहीं पाए हैं, हमको घर जाना है। नेट, आप और मैं कल वापस आएंगे और इसे ढूंढेंगे। वे घर चले गए। समस्या क्या है? जब आप अगले दिन बाहर आएंगे और दलदल में जाएंगे तो क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? मेरे पिता एक कहानी सुनाते हैं। मेरे पिताजी ने प्रार्थना की। नेट और वह अगले दिन वापस आए। मेरे पिताजी ने प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त करने के बाद उसने नीचे दलदल में देखा और वहीं पागल कॉन्टैक्ट लेंस पड़ा था। वह बस उसके पास पहुंचा और उसे उठा लिया। वहां था। और आप कहते हैं, वाह, ऐसा कुछ घटित होने की क्या संभावना है? मैं उस दलदल में खो जाऊंगा। ठीक उसी स्थान पर वापस आने की तो बात ही छोड़िए जिसे आप तब नहीं पा सके थे जब आपने उसे गिरा दिया था। एक दिन बाद वापस आओ, तुम सीधे ऊपर चलो, तुम भगवान से प्रार्थना करो और तेजी से वह उसे ढूंढ लेता है। जैसा कि मुझे बताया गया है, नेटली अब बफेलो न्यूयॉर्क में एक पादरी हैं। और वैसे भी भगवान के पराक्रमी कार्य मुझे कैसे कहना चाहिए, और बड़े लोगों को कहानी याद है। तो वे मेरे पिता के पास आए। फिर मेरी माँ ने मुझे जो कुछ हुआ उसकी कहानी सुनाई। मेरे पिता कभी भी इस तरह की चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। वह था, मैं कैसे कहूं, वह बहुत अंतर्मुखी शांत आदमी है। लेकिन मेरी माँ वह कहानी साझा करती हैं। तो फिर भी इसे अगली पीढ़ी के लिए प्रचारित करें। हम उस विचार पर वापस आने वाले हैं। अब प्रशंसा का स्थान, और मैं इसके माध्यम से और अधिक तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि हमने बात की है। हम इन विचारों के बारे में तेजी से बात करेंगे। प्रशंसा का स्थान। जैसे जैसे मैं इस वेदी की दूसरी पुस्तक में स्तुति देख रहा था, यह कुछ निश्चित स्थानों पर वापस आ रही थी जहां स्तुति की गई थी। और इसलिए मैं उन महत्वपूर्ण स्थानों को कम नहीं करना चाहता। तो मुझे बस कुछ को देखने दो, परमेश्वर के भवन, उसके पवित्र पर्वत और उसकी वेदी को। ये सभी अध्याय 42 और 43 से आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में इस पुस्तक की शुरुआत इस प्रकार होती है। यहाँ स्थलाकृतिक या भौगोलिक या स्थान संदर्भों पर ध्यान दें। यह 42:4 कहता है, ये बातें मुझे याद आती हैं जब मैं अपनी आत्मा उंडेलता हूँ, कैसे वह भीड़ के साथ जुलूस को कहाँ तक ले जाता था। उत्सव की भीड़ के बीच खुशी के नारे और धन्यवाद के साथ भगवान के घर की ओर। अध्याय 43, यह भजन 42 श्लोक 3 और 4 के समानांतर है, जो आपके प्रकाश और सत्य को आगे बढ़ाता है। उन्हें मेरा मार्गदर्शन करने दीजिए, वे मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर, जहां तू रहता है, पहुंचा दे। भगवान कहां रहते हैं? वह अपने पवित्र पर्वत पर निवास करता है। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा। इस पवित्र पर्वत पर परमेश्वर की वेदी है। मैं अपनी खुशी और खुशी के लिए भगवान की वेदी पर जाऊंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजाकर तेरी स्तुति करूंगा। और आप इन सभी विषयों को एक साथ मिश्रित होते हुए देख सकते हैं, जब वह मंदिर में जाता है और जब वह वेदी पर होता है, और वह वहां खुशी के रूप में भगवान की स्तुति करता है और उसका आनंद उमड़ पड़ता है। भजन 68 छंद 16 से 20 और फिर 24 से 26 और 35। मैं बस इन्हें एक साथ पढ़ूंगा। यह आंदोलन सिनाई से है, जहां भगवान सिनाई में रहते थे। 10 आज्ञाओं और मूसा को याद रखें, और सिनाई, 10 आज्ञाओं, सिनाई में भगवान के महान पर्वत से यरूशलेम में अभयारण्य तक यह आंदोलन है। और इसलिए भजन ईश्वर की इस गतिविधि को ऐसे चित्रित करता है, जैसे ईश्वर स्वयं आगे बढ़ता है। अब ईश्वर कहाँ है? तुम कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान हर जगह है। और मुझे कभी कभी डर लगता है कि जब हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को मानते हैं, तो हम इस धारणा को कम या कम कर देते हैं कि ईश्वर एक विशेष स्थान पर रहता है। और होता यह है कि हमारी सर्वज्ञता इस भेदभाव के बजाय सिनाई से यरूशलेम तक, जहां अभयारण्य है, इस आंदोलन को सब कुछ निगल लेती है। और भजनहार सचमुच इसमें रुचि रखता है। अब फिर से सावधान रहें कि आप विशिष्ट भौगोलिक संदर्भों को बदनाम करने के लिए सर्वज्ञता का उपयोग कैसे करते हैं। भजन 68 श्लोक 16, हे उबड़ खाबड़ पहाड़ों, ईर्ष्या से क्यों देखो उस पर्वत पर जहां भगवान ने शासन करना चुना है, राजत्व आदर्श, जहां भगवान स्वयं हमेशा के लिए निवास करेंगे। भगवान के रथ लाखों करोड़ों हैं। प्रभु सिनाई से अपने पवित्र स्थान में आए हैं। तो यह आंदोलन सिनाई, परमेश्वर के पर्वत से पवित्र स्थान यरूशलेम की ओर है। जब आप ऊंचे स्थान पर चढ़े, तो आपने बंदियों को अपनी रेलगाड़ी में चढ़ाया। नए नियम का संदर्भ, तुम्हें मनुष्यों से, यहां तक कि विद्रोहियों से भी उपहार मिले कि हे प्रभु परमेश्वर, तुम वहां निवास कर सको। प्रभु की स्तुति करो, परमेश्वर की, हमारे उद्धारकर्ता की, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। सेला। फिर नीचे अध्याय 68 श्लोक 24, बस कुछ श्लोक नीचे। हे भगवान, आपका जुलूस सामने आ गया है, मेरे भगवान और राजा का जुलूस अभयारण्य में गायकों के सामने, उनके बाद संगीतकारों और उनके साथ डफ बजाती हुई युवतियों के साथ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। बड़ी सभा में परमेश्वर की स्तुति करो। इसराइल की सभा में जो पवित्र स्थान में इकट्ठी हो रही है, यहोवा की स्तुति करो। भजन 68 श्लोक 35, बस कुछ और नीचे। हे भगवान, आप अपने अभयारण्य में अद्भुत हैं। ध्यान दें कि यह कैसे भगवान को पवित्र स्थान में रखता है, कि भगवान के पास भगवान के लिए विशेष स्थान है। आपके अभयारण्य में यह प्रतिबंधात्मक नहीं है, लेकिन ऐसे स्थान हैं जो उसके लिए विशेष हैं। तेरे पवित्र स्थान में इसराइल का परमेश्वर अपनी प्रजा को सामर्थ और सामर्थ देता है। ईश्वर की स्तुति हो। तो यह अभयारण्य से निपट रहा है। अब मैं अभयारण्य और वहाँ के एक विशेष पर्वत के बारे में और अधिक विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। और आप देखेंगे कि सियोन के बारे में विशेष रूप से बात की गई है। भजन अध्याय 65 श्लोक 1 और 4। भजन 65 श्लोक 1 और 4। हे भगवान, स्तुति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कहाँ? सियोन में। आप कहते हैं, ठीक है, स्वर्ग में प्रशंसा प्रतीक्षा कर रही है। नहीं, स्तुति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हे परमेश्वर, सियोन में हमारी मन्नतें पूरी होंगी। धन्य हैं वे जिन्हें आप चुनते हैं और अपने आंगन में रहने के लिए निकट लाते हैं। हम तेरे घर की, तेरे पवित्र मंदिर की, तेरे घर की, तेरे पवित्र मंदिर की, तेरे पवित्र स्थान की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए हैं। और यह कहाँ स्थित है? सियोन में। सियोन में पवित्र मंदिर। अगला पवित्र स्थान भजन 63 पद 2 यह कहता है, मैंने तुझे पवित्र स्थान में देखा है और तेरी शक्ति और महिमा को देखा है। कहाँ? अभयारण्य में। स्तुति का स्थान, स्तुति के स्थान के उस विषय को जारी रखना। आपके यहाँ भगवान का शहर है। बाइबल में कुछ स्थानों में से एक जो यरूशलेम को भगवान के शहर के रूप में संदर्भित करता है। और फिर भजन 46 छंद 4-7, मुझे बस इसे पढ़ने दो। वहाँ एक नदी है जिसकी धाराएं परमेश्वर के नगर को, अर्थात पवित्र स्थान को, जहाँ परमप्रधान निवास करता है, आनंदित करती हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? आप कहते हैं कि भगवान स्वर्ग में रहते हैं या भगवान हर जगह रहते हैं? नहीं, यह उससे कहीं अधिक विशिष्ट है। यह कहता है परमेश्वर का नगर, पवित्र स्थान, परमेश्वर का नगर यरूशलेम। भगवान उसके भीतर है। वह नहीं गिरेगी। दिन निकलते ही भगवान उसकी मदद करेंगे। राष्ट्रों में उथल पुथल मच जाती है और राज्य नष्ट हो जाते हैं। वह अपनी आवाज उठाता है और पृथ्वी पिघल जाती है। सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ हैं। याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ सेला है। याद रखें कि कैसे वह राजत रूपक किले और महान मजबूत मीनार के विचार को महत्व देता है। एक और सियोन थीम भजन 48 के समान है। भजन 48, यदि आप कभी यरूशलेम जाते हैं तो आप भजन 48 को अपने पास रखना चाहेंगे। भजन 48, प्रभु महान है और हमारे परमेश्वर के नगर में सबसे अधिक स्तुति के योग्य है। उस वाक्यांश पर ध्यान दें, हमारे भगवान का शहर, उसका पवित्र पर्वत। यह अपनी उदात्तता में सुंदर है, पूरी पृथ्वी का आनंद है, जैसे कि जाफोन की चरम ऊंचाई सियोन पर्वत है, जो महान राजा का शहर है, महान राजा का शहर है। राजा के रूपक पर ध्यान दें और महान राजा कहाँ रहता है? वह सियोन पर्वत पर रहता है, साफोन पर्वत पर नहीं। भगवान उसके गढ़ों में है। उसने खुद को उसका गढ़ दिखाया है। और इस प्रकार आपको यह विचार आता है कि ईश्वर स्वयं अपने लोगों की रक्षा के लिए गढ़ बन रहा है। भजन 52, मुझे उसका शेष भाग पूरा करने दीजिए। मैंने श्लोक 13 को छोड़ दिया। मैं 48:12-14 तक पीछे जाना चाहता हूँ। और ये पढ़ने में सुंदर हैं। मुझे यरूशलेम की दीवारों के ऊपर इन्हें पढ़ना याद है। यह कहता है, सियोन के चारों ओर चलो, उसके चारों ओर घूमो, उसके टावरों को गिनो, उसकी प्राचीरों पर विचार करो, उसके गढ़ों को देखो, ताकि तुम अगली पीढ़ी को उनके बारे में बता सको। क्योंकि सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर यही है। क्योंकि परमेश्वर युगानुयुग हमारा परमेश्वर है। वह अंत तक हमारा मार्गदर्शक रहेगा। और वो क्या है? प्राचीर के चारों ओर घूमें और अगली पीढ़ी को यरूशलेम के बारे में बताएं। अगली पीढ़ी को यरूशलम के बारे में बताएं। वैसे एक कार्यक्रम है जिसे मैंने वर्षों पहले लिखा था, जिसका नाम गेट लॉस्ट इन जेरूसलम है, जहां आप वास्तव में एक आभासी दुनिया में जेरूसलम की सड़कों पर चल सकते हैं। यह उतना अच्छी तरह से नहीं किया गया है जितनी अच्छी तरह से किया गया है। अब गूगल मानचित्र के साथ आप वास्तव में यरूशलेम में भी जा सकते हैं, लेकिन यह अभी भी है। हम आपको विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगे और आपको चीजें समझाएंगे। तो यह कहता है, सियोन के चारों ओर चलो, उसके चारों ओर घूमो, उसके टावरों को गिनो। फिर अध्याय 50 श्लोक 2 में यह कहा गया है, सियोन से सुंदरता में परिपूर्ण भगवान चमकते हैं। और इसलिए आपको यह चीज सियोन से मिलती है, सुंदरता में परिपूर्ण चमकता हुआ ईश्वर। भजन 66 श्लोक 13 और 14, हम भजन 66 पर वापस आते हैं। यदि तू ध्यान दे तो मैं होमबलि लेकर तेरे मंदिर में आऊंगा और तुझसे की हुई अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। वे मन्नतें जो मेरे होठों से और जो मेरे मुंह से तब निकली थीं जब मैं संकट में था, मैं मुसीबत में था, मैंने भगवान से मन्नतें मांगी। मैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए कहां जाऊं? मैं उन मन्नतों को पूरा करने के लिए मंदिर जाता हूं। और फिर मंदिर का विशेष रूप से संदर्भ दिया गया और हमने भजन 43.4 और अन्य चीजों के बारे में बात की है। भगवान का घर, ठीक है, तो यह है स्तुति का स्थान। लेकिन अब मैं जो करना चाहता हूं वह मंदिर स्तुति स्थल अभयारण्य से एक आंदोलन बनाना है, और मैं दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। हमने भगवान के शहर के बारे में बात की है। हमने इस बारे में पढ़ा है कि कैसे इसे सियोन, परमेश्वर का शहर, महान राजा का शहर कहा जाता है। और अब मैं जो करना चाहता हूं वह दस्तावेज है। जैसा कि मैं देख रहा था कि भगवान सियोन, उनके पवित्र मंदिर, महान राजा के शहर यरूशलेम पर निवास करेंगे। लेकिन फिर जो हुआ वह यह था कि सियोन से प्रशंसा फूट पड़ी और पृथ्वी के सभी छोर तक पहुंच गई। और इसलिए आपने जो देखा वह यह है कि सियोन थीम है जो तब पार हो जाती है। सियोन बिग बैंग सिद्धांत बन जाता है, यह केंद्रीय वस्तु बन जाती है और फिर उड़कर पृथ्वी के छोर तक चली जाती है। और क्या तुम्हें सामरिया की स्त्री से यीशु की यह टिप्पणी याद है कि तुम न तो इस पहाड़ पर और न ही यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करोगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और ऐसा लगता है जैसे यीशु कह रहे हो, हे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है जगह कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां यही कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि जो कहा जा रहा है वह यह है कि अब समय आ गया है, यीशु यहाँ है, वह सियोन है। ईश्वर की स्तुति सियोन से पृथ्वी के छोर तक जाती है, और इसलिए पृथ्वी के अंतिम छोर के संदर्भ में हम अब यही हैं, और इसका पूर्वाभास हो चुका है। वास्तव में भजन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, प्रशंसा की सार्वभौमिकता। इसलिए मैं सियोन से आगे बढ़ना चाहता हूं। सियोन निश्चित रूप से वहां है, मैं उसे कम नहीं करना चाहता। मैं यह पहचानना चाहता हूं कि उनके मन में सियोन, परमेश्वर के घर, परमेश्वर के मंदिर, पवित्र स्थान के प्रति बहुत सम्मान था। लेकिन फिर जैसे जैसे यह सार्वभौमिक रूप से फैलता है, इसका एक अतिक्रमण होता है। तो आइए इनमें से कुछ सार्वभौमिकता छंदों पर नजर डालें। भजन 66 श्लोक 1 और 2 कहता है, हे सारी प्रियवी, न केवल सियोन, सारी प्रियवी, न केवल इसराइल की मंडली, न केवल इसराइल की मंडली, परंतु सारी प्रियवी पर जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा गाओ, उसकी स्तुति को महिमामय बनाओ। सारी पृथ्वी तुम्हें प्रणाम करती है, वे तुम्हारी स्तुति गाते हैं, वे तेरे नाम का भजन गाते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हुए राष्ट्रों, यह भजन 67 छंद 4 और 5 है। राष्ट्र आनंदित हों और आनंद से गाएं। आप जो लोगों पर, बहुवचन लोगों पर, केवल इसराइल पर ही नहीं, न्यायपूर्वक शासन करते हैं और पृथ्वी के राष्ट्रों का मार्गदर्शन करते हैं। हे परमेश्वर, केवल इसराइल ही नहीं, देश देश के लोग तेरी स्तुति करें, सारी जातियां तेरी स्तुति करें। और इसलिए आपको इस प्रकार की गतिविधि से छुटकारा मिलता है। और जो हम देख सकते हैं वह इसराइल से परे और पूरी दुनिया में चर्च है। लोग तेरी स्तुति करें। भजन 68 पद 32, परमेश्वर का गीत गाओ, स्तुति करो, परमेश्वर का भजन गाओ, हे प्रियवी के राज्य, राज्य के राज्य, राज्य के राज्यों, यहोवा का भजन गाओ। केवल इसराइल ही नहीं, इस पृथ्वी के राज्य सभी परमेश्वर की स्तुति गाते हैं। प्रभु की स्तुति गाओ। और फिर आखिरी वाला, जो मुझे पसंद है क्योंकि मुझे मैट हॉफलैंड का गाना भजन 57:5-11 में पसंद है। यह एक परहेज है। एक श्लोक एक भजन में कुछ ऐसा है जहां आप देखेंगे कि यह एक ही बात को दो बार कहता है। यह खूबसूरत है। जब आप कोई परहेज करते हैं तो आप जानते हैं कि वह व्यक्ति इसी बारे में बात कर रहा है। उसने यह परहेज मारा है। तो वह कहते हैं, यह प्रार्थना है, हे भगवान, स्वर्ग से भी ऊंचे हो जा, तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैले, सियोन ही नहीं, तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैले। फिर श्लोक 11 में भजन 57:11, वही प्रार्थना, हे भगवान, स्वर्ग से ऊपर ऊंचा हो जाओ, तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैले। और इसलिए सियोन की एक उत्कृष्ट प्रकार की चीज है। हम सियोन को उसका हक दिलाना चाहते हैं। इसराइल की सभा में परमेश्वर का स्थान अद्भुत था। यह गौरवशाली था। यह सुंदरता और चीजों में परिपूर्ण था, लेकिन फिर यह प्रशंसा और चीजों की सार्वभौमिकता की ओर बढ़ रहा है। अब सामग्री, स्तुति की सामग्री क्या है? और हम यहां तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। क्लाउस वेस्टमैन नाम का एक व्यक्ति है जिसने इस वर्णनात्मक प्रशंसा के संदर्भ में कुछ बहुत दिलचस्प चीजें की हैं, जिसे वह वर्णनात्मक प्रशंसा कहता है। इसका मतलब है कि ईश्वर की उसके कार्यों और वह कौन है, उसके गुणों, उसकी पवित्रता और उसकी प्रेममयता के लिए स्तुति करना। हम उसकी प्रेममयी दयालुता, उसकी दया और उसके पुराने शक्तिशाली कार्यों, उसके परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों को देखने जा रहे हैं। और इसे वर्णनात्मक प्रशंसा कहा जाता है। वेस्टरमैन फिर यह भी कहते हैं कि घोषणात्मक प्रशंसा है। और यह ईश्वर द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए उसकी घोषणात्मक स्तुति है, मुक्ति की विशिष्ट रिपोर्टें हैं। और इसलिए यह परमेश्वर ने किसी व्यक्तिगत और विशिष्ट कार्यों के लिए जो उसने वास्तव में किया है, उसके लिए अधिक धन्यवाद है। और इसलिए वह वर्णनात्मक प्रशंसा और घोषणात्मक प्रशंसा के बीच अंतर करता है। तो हम इनमें से कुछ विभिन्न प्रकार की प्रशंसाओं को देखना चाहते हैं। और इसलिए हम भजन 64:9 और फिर 66:3 से शुरू करेंगे। और यह कहता है, सारी मानव जाति डर जाएगी और परमेश्वर के कार्यों का प्रचार करेगी और उस पर विचार करेगी कि उसने क्या किया है। तो प्रशंसा की सामग्री क्या है? स्तुति की विषय वस्तु ईश्वर के कार्य हैं। परमेश्वर के कार्य प्रशंसा की विषय वस्तु हैं। अध्याय 66 का श्लोक 3:66-3 परमेश्वर से कहता है, तेरे कर्म कितने अद्भुत हैं। परमेश्वर के कार्य, इन लोगों ने अपने चारों ओर परमेश्वर के कार्यों को देखा। मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की समस्याओं में से एक यह है कि लोग चारों ओर देखते हैं कि भगवान हमारे चारों ओर अद्भुत चीजें कर रहे हैं। और लोग, क्योंकि हम इतने धर्मनिरपेक्ष हैं, हम उस समीकरण में भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। हम इसे बस कुछ वैज्ञानिक चीज के रूप में देखते हैं जो घटित हो रही है। यह एक तरह से अवैयक्तिक है। इन लोगों ने हर जगह परमेश्वर के महान कार्यों को देखा। आपके कर्म कितने अद्भुत हैं। आपकी शक्ति इतनी महान है कि आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देते हैं। भजन 65 श्लोक 6 से 8 यही कहता है। अब यह सृष्टि के बारे में बात कर रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि प्रशंसा की सामग्री में से एक रचना की यह धारणा होगी। वह उनमें से एक होने जा रहा है। और फिर हम चीजों का विकास करेंगे। सृजन, यह सृजन पर वापस जाता है। आज हम लोग सृजन पर बहस करना पसंद करते हैं। सृष्टि कब हुई? सृष्टि कैसे हुई? स्तोत्र के लोग इस बात से चिंतित नहीं हैं कि यह कब हुआ, यह क्यों हुआ या यह कैसे हुआ। वे परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों और सृष्टि में उसके शक्तिशाली कार्यों में रुचि रखते हैं, और इसलिए वे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए सृष्टि का उपयोग कर रहे हैं। सृष्टि का एक डॉक्सोलॉजिकल कार्य है, और भजनहार के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु ईश्वर की अद्भुत रचना के लिए उसकी स्तुति करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्पत्ति 1 और 2 का फोकस इसी पर है। वैसे हर समय हर चीज हर बात पर बहस करने से यह कहीं बेहतर है, लेकिन फिर भी भजन 65 छंद 6 से 8 कहता है, जिसने ईश्वर को बनाया, जिसने तेरी शक्ति से पहाड़ों को बनाया, जिसने अपने आप को शक्ति से सुसज्जित किया, जिसने गरजते समुद्र को शांत किया। समुद्र को शांत कौन करता है? प्राचीन विश्व में समुद्रों को अराजकता के रूप में देखा जाता था। वे अराजकता और अंधकार और उस जैसी चीजों के देवताओं के क्षेत्र थे। और होता यह है कि यह कहता है, नहीं, ईश्वर एक है और वह समुद्र को शांत करता है। परमेश्वर समुद्र को शांत करने में सक्षम है। उनकी लहरों की गर्जना, राष्ट्रों की उथल पुथल, यह कौन करता है? भगवान समुद्र को शांत करते हैं। अब आप मुझे मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं यीशु के बारे में बात कर रहा हूं। अब यीशु को याद करो, शांत रहो और लहरें शांत हो जाएंगी। क्या इससे शिष्य घबरा जाते हैं? इससे शिष्य घबरा गए, क्योंकि समुद्र को कौन शांत कर सकता है? वे यह बात भजनों से जानते हैं। वह कौन है जो समुद्र को शांत करता है? यह यहोवा है, यह परमेश्वर है जो समुद्र को शांत करता है, और यीशु ही समुद्र को शांत करता है। और यह ऐसा है, वाह, यीशु भगवान समुद्र को शांत करता है। और इसलिए यह वहां एक सुंदर संदर्भ है। दूर रहने वाले लोग तेरे आश्चर्यों से डरते हैं, जहां सुबह होती है और शाम ढल जाती है। आप खुशी के गीत, सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रकार का आह्वान करते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त, ऐसा लगता है जैसे कोई चलचित्र मैंने कभी सुना हो। सूर्योदय सूर्यास्त, आप भगवान की सुंदरता और भव्यता और हर सुबह के रंगीन प्रदर्शन देखते हैं। सूर्य अस्त होता है और सूर्योदय अलग अलग होता है। यह बहुत सुंदर है। अब सृजन, हाँ, लेकिन फिर भजनकार जाता है, सृजन ईश्वर की रचना, धर्मशास्त्र ईश्वर की स्तुति, लेकिन सृष्टि की संभावित देखभाल भी। और इसलिए आप इसे भजन 65 श्लोक 9 और 10 में देखते हैं। वह कहते हैं, आपने न केवल इसे बनाया, बल्कि आप इस भूमि की देखभाल भी करते हैं। तुम भूमि की देखभाल करते हो और उसे सींचते हो। आपने इसे प्रचुर मात्रा में समृद्ध किया है। लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए भगवान की धाराएं पानी से भर जाती हैं। तो आपने इसे इसीलिए ठहराया है। तू उसके खांचों को भिगो दे और उसकी चोटियों को समतल कर दे। तू उसे वर्षा से नरम कर और उसकी फसल को आशीर्वाद दे। और इसलिए आप इन लोगों को बारिश के लिए भगवान की स्तुति करते हुए देखते हैं। इज़राइल एक वर्षा संस्कृति है। यह नील से भिन्न है। नील नदी एक नदी संस्कृति है। और इसलिए इज़राइल को बारिश के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ा और परमेश्वर ने बारिश दी। और इसराइलियों ने कहा, हाँ हे परमेश्वर धन्यवाद। और यही प्रशंसा का आधार है। जिस भूमि पर वे रहते थे उसके लिए भगवान की संभावित देखभाल। अब न केवल सृजन और प्रोविडेंस बल्कि अब और अधिक विशेष रूप से मैं भजन की पुस्तक में पाए जाने वाले भगवान के विशिष्ट शक्तिशाली कार्यों में जाना चाहता हूँ, जो कि भगवान के ये शक्तिशाली कार्य हैं जो प्रशंसा का आधार बन जाते हैं। भजन 66 फिर से भजन 66 हम निर्गमन को देखने जा रहे हैं। अब निर्गमन मैं किसी की गर्जना चुराने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन डेविड इमानुएल नाम का एक व्यक्ति है जिसे मैं बाद में देर से वसंत या गर्मियों की शुरुआत में पकड़ने की उम्मीद कर रहा हूँ। वह हमारे लिए भजनों में ईश्वर की स्तुति या निर्गमन मूल भाव की धारणा विकसित करने जा रहा है। वह 5 भजन भजन 78 और कुछ अन्य भजन भजन 105, 106 और भजन 135 विकसित करने जा रहा है। वह हमारे लिए 5 भजन विकसित करने जा रहा है जहां यह निर्गमन रूपांकन पुराने नियम में एक महान मुक्तिदायी कार्य है। डेविड ने स्तोत्र पर अपना शोध प्रबंध किया है और आप स्तोत्र की पुस्तक के माध्यम से निर्गमन की गूंज कैसे सुन सकते हैं। सुंदर सामान डेविड हमारे लिए ऐसा करेगा। और इसलिए मैं यहाँ आपको इस मूल भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ जो निर्गमन के बारे में सामने आता है और यह कैसे घटित होता है। भजन 66 श्लोक 6 यह कहता है, उसने समुद्र को सूखी भूमि में बदल दिया। वे पैदल ही पानी के बीच से गुजरे। आओ हम उसमें आनंद मनाएं। दूसरे शब्दों में निर्गमन के कारण उसने पानी को विभाजित कर दिया। हम पैदल चलकर आए। आइए हम निर्गमन में किए गए महान कार्य के कारण परमेश्वर में आनंद मनाएं। और केवल निर्गमन ही नहीं, यहाँ वह विजय के बाद आगे बढ़ता है। यहोशू के साथ कनान में विजय, जब यहोशू ने लोगों को ले लिया और उन्होंने भूमि ले ली। यह भजन 44 श्लोक 2-4 तक है। तूने अपने हाथ से अन्य जातियों को निकाल दिया और हमारे पुरखाओं को बसाया। तूने देश को निकाल दिया और हमारे बाप दादों को बसाया। तूने लोगों को कुचल डाला और हमारे बाप दादों को फलने फूलने दिया। यह उनकी तलवार से नहीं था कि उन्होंने देश जीता, नहीं उनके हाथ ने उन्हें जीत दिलाई। यह आपका दाहिना हाथ, आपकी बाह और आपके चेहरे की रोशनी थी। क्यों? क्योंकि तूने उनसे प्रेम किया। आप मेरे राजा और मेरे भगवान हैं। आप जानते हैं यह राजा की जीत है जो जैकब के लिए जीत का आदेश देता है। आप मेरे राजा और मेरे भगवान हैं जो याकूब के लिए जीत का फैसला करते हैं। भूमि पर कब्जा करना एक विचार है। शेकीना की महिमा सिनाई पर्वत से सियोन पर्वत तक बढ़ती है। सिनाई पर्वत से सियोन तक परमेश्वर की शेकीना महिमा का यह बदलाव जिसे हमने पहले देखा है। भगवान के रथ लाखों करोड़ों हैं। प्रभु सिनाई से यरूशलेम में अपने पवित्र स्थान में आए हैं। स्तोत्र 68 श्लोक 5-6। अब यह और अधिक शक्तिशाली कृत्य बन गया है, लेकिन देखें कि यह अब कैसे घटता है। परमेश्वर के पराक्रमी कार्य क्या हैं? क्योंकि वह राजा होकर अनाथों का पिता है और अपने पवित्र निवास में परमेश्वर विधवाओं का रक्षक है। भगवान परिवारों में अकेले लोगों को बसाते हैं। वह कैदियों को गाते हुए आगे ले जाता है। मुझे उस पर वापस जाने दो। भगवान परिवारों में अकेले लोगों को बसाते हैं। हम सभी की संस्कृति में अब अकेलापन है। मुझे लगता है कि परिवार, परिवारों का महत्व और परिवार के टूटने ने लोगों को अकेलेपन की गहरी गहरी भावना से ग्रसित कर दिया है। भगवान परिवारों में अकेले लोगों को बसाते हैं। वह बंदियों को गाते हुए आगे बढ़ाता है, परंतु विद्रोही धूप से झुलसे हुए देश में रहते हैं। व्यक्तिगत मुक्ति, भगवान ने न केवल राष्ट्र और उस तरह की चीज को बचाया है, बल्कि व्यक्तिगत मुक्ति भी दी है। भजन संहिता 54:7 कहता है, क्योंकि उसने मुझे मेरे सब संकटों से छुड़ाया है और मेरी आंखों से मेरे शत्रुओं पर जय की दृष्टि लगी है। स्तोत्र 54:7। और फिर यह बताना कि विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा मेरे उद्धार के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। भजन 66:16। हे यहोवा के सब दरवैयों, आकर सुनो, मैं तुमसे कहूं कि उसने मेरे लिए क्या किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि उसने मेरे लिए क्या किया है। भजन 66:16। और फिर भविष्य में मुक्ति के लिए भगवान की आशा। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब आनंद करें और मगन हों। जो तेरे उद्धार से प्रेम रखते हैं वे सदा कहते रहें, परमेश्वर की महिमा हो। भगवान को महान होने दो। और यह एक और विषय बन गया है जिसका मैंने पता नहीं लगाया, लेकिन यह वास्तव में दिलचस्प है। कुछ स्तोत्र एक प्रकार की कहानी से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक मुखिया की यह धारणा है कि हे भगवान राष्ट्रों से ऊपर है। तो यह मूल रूप से भजनहार द्वारा ईश्वर की स्तुति और स्तुति की विषय वस्तु है। अब स्तुति की यह सामग्री पाप की क्षमा तक पहुंच जाती है। भजन संहिता 51:14-18 तक, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे खून के अपराध से बचा। मेरी जीभ तेरे धर्म का गीत गाएगी। तू मुझे बचा, मैं तेरे धर्म का गीत गाऊंगा। हे प्रभु, मेरे होंठ खोलो और मेरा मुंह तेरी स्तुति का वर्णन करेगा। तुम बलि से प्रसन्न नहीं होते, नहीं तो मैं ले आता। तुम होमबलि से प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर का बलिदान एक टूटी हुई आत्मा और एक टूटा हुआ और पछताया हुआ हृदय है। हे परमेश्वर, तू तुच्छ न जानेगा। अपनी खुशी में सियोन को समृद्ध बनाओ। यह भजन 51 है, बतशेबा के साथ पाप के बाद दाऊद का महान पश्चाताप भजन। अपनी प्रसन्नता के अनुसार सियोन को समृद्ध कर, यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण कर। इस प्रायश्चित स्तोत्र में यह कुछ दिलचस्प है, यरूशलेम की दीवारों का निर्माण करो, फिर उसके गुणों की प्रशंसा। हम इन पर शीघ्रता से प्रहार करेंगे। इन्हें वास्तव में संपूर्ण व्याख्यानों में ही विकसित किया जा सकता है। भजन 62:12 यह कहता है, और हे प्रभु तू क्या है? प्यार करने वाला। हे प्रभु तू झिझक रहा है। आप झिझक रहे हैं। वाचा का प्रेम, जिद्दी प्रेम, अटल प्रेम, वाचा का प्रेम। आप उस प्यार को नहीं छोड़ते जो नहीं छोड़ता। यह दृढ़ प्रेम की धारणा है। हेसेद उसके लिए हिब्रू शब्द है। हे प्रभु तू झिझक रहा है। निश्चय तू हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। वहां बहुत दिलचस्प टिप्पणी है। निश्चय ही परमेश्वर का प्रेम क्या है? तू हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। 66:3 भगवान से कहो, तुम्हारे कर्म कितने अद्भुत हैं। आपकी शक्ति इतनी महान है कि आपके शत्रु घबरा जाते हैं। परमेश्वर की शक्ति, उसकी शक्ति के लिए उसकी स्तुति करना। इसके अलावा मैं बस ईश्वर के इन गुणों पर प्रहार कर रहा हूं। धार्मिकता। भजन 71:19 हे परमेश्वर, तेरी धार्मिकता आकाश तक पहुंचती है। आपने महान कार्य किए हैं। हे भगवान, तेरे जैसा कौन है? यह एक प्रश्न है। यह एक अलंकारिक प्रश्न है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भगवान जैसा कौन है। मीकायाह, यहोवा के समान कौन है? उनके जैसा कोई नहीं है। वह एक सुई जेनेरिस है। वह एक तरह का अनोखा है। वह बिल्कुल अनोखा है। ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई और नहीं है। उसकी छवि में कौन बना है? वह भी प्रशंसा की बात है। समस्त ब्रह्मांड में से उसकी छवि में कौन बना है? मानव जाति। अद्भुत। अब धार्मिकता। ईश्वर की स्तुति में उसके बारे में बात करने के लिए रूपकों का उपयोग किया जाता है। स्तुति की सामग्री के संदर्भ में वे ईश्वर के बारे में बात करते हैं कि वह एक आश्रय, एक मजबूत मीनार, एक किला है और वह मुक्ति और इस प्रकार की चीजें देता है। और इसलिए ये अद्भुत चीजें हैं। भगवान का नाम स्तुति करने योग्य है। भगवान का नाम स्तुति करने योग्य है। ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर का एक रूप है। और नाम हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कभी कभी हम कहते थे कि नाम, आपका नाम महत्वपूर्ण है। इसका स्थिति और चीजों में कुछ मतलब है। अब मैं समकालीन पूजा के निहितार्थों और निहितार्थों के बारे में हमारी चौथी बातचीत में इसे समाप्त करना चाहता हूँ। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले भगवान की स्तुति शोरगुल, जोर से, उत्साहपूर्ण, भगवान की प्रशंसा करने वाली है, अपने आप पर आत्ममुग्ध ध्यान केंद्रित करने में नहीं, बल्कि भगवान पर ध्यान केंद्रित करने में। ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति इस आत्ममुग्धता की ओर बढ़ रही है, जहां हम हर समय खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और केवल वही मायने रखता है जो मेरे लिए अच्छा है। और यह हमें तोड़ देता है जहां ईश्वर की स्तुति हमें ईश्वर की ओर बढ़ने और उसकी महानता पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा ध्यान उस महान राजा पर केंद्रित होता है जो उद्धार करता है, बचाता है और बदला लेता है। तो प्रशंसा जोरदार और शोर है। हमने उसके साथ एक तरह से काम किया है। भगवान के पुराने समय के अद्भुत कार्यों का वर्णन किया गया है। भगवान का वर्तमान कार्य, हाँ। ईश्वर का वर्तमान कार्य, हाँ। लेकिन पुराने ईश्वर के महान कार्यों, सृष्टि, उसकी संभावित देखभाल, निर्गमन, विजय, इन सभी महान चीजों और अतीत में ईश्वर के शक्तिशाली कार्यों के बारे में बता रहा है। यह कैसे काम करता है जब हमारी संस्कृति मूल रूप से है? हमारे युवा बाइबिल की निरक्षरता के साथ बड़े हो रहे हैं कि वे भगवान के शक्तिशाली कार्यों को नहीं जानते हैं। वे केवल यीशु के बारे में कुछ कहानियां जानते हैं, शायद नए नियम में, लेकिन वे पुराने नियम के परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों को नहीं जानते हैं। उनकी प्रशंसा में ऐतिहासिक गहराई का अभाव है। प्रशंसा में उन जड़ों का अभाव है जो महान निर्गमन परंपराओं और यहोशू के तहत विजय परंपराओं, शाऊल, डेविड और सुलेमान के राजाओं और इसराइल के कई राजाओं और पुराने भविष्यवक्ताओं के तहत विजय परंपराओं में निहित हैं। यहां तक कि भजनहार भी प्रसिद्ध नहीं हैं। मेरा मतलब है, कितने लोगों ने वास्तव में भजनों पर कई उपदेश सुने हैं? और इसलिए यह निरक्षरता ईश्वर की हमारी प्रशंसा को कम कर देती है, क्योंकि हम पुराने कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कभी भी पुराने कार्यों की सराहना करना नहीं सीखा है। तो मूलतः हमारी प्रशंसा में एक सपाटता है। हाल ही में उसने मेरे लिए जो किया है, उसके लिए हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन इसमें अगली पीढ़ी को बताने की जड़ें और उसमें निरंतरता का अभाव है। सियोन के लिए ईश्वर की स्तुति उस अभयारण्य में उस स्थान के महत्व को कम नहीं करती है जहां ईश्वर सियोन पर रहते थे, लेकिन फिर पूरे विश्व में ईश्वर की स्तुति की सार्वभौमिकता की ओर बढ़ना। उनका सिंहासन, उनके सिंहासन और हमारे जीवन के बीच संबंध और पूरी दुनिया में जाने के बारे में यह आंदोलन। हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कैसे करते हैं? यही उसकी दुनिया है। ये मेरे पापा की दुनिया है। हम सियोन पर्वत पर महिमा, शक्ति और पवित्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कैसे करते हैं? हम हर दिन अपने जीवन में शक्ति और पवित्रता में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कैसे करते हैं? क्योंकि भगवान का मंदिर अब कहाँ है? हम भगवान के मंदिर हैं और भगवान हमारे साथ रहते हैं, इम्मानुएल। और इसलिए यह प्रशंसा की बात सुंदर तरीके से और पूरी पृथ्वी पर सार्वभौमिकता में फैलती है। अब जिस विलाप का हमने उल्लेख किया वह प्रशंसा का आधार है। मुझे लगता है कि यह एक तरह से उस समृद्धि का प्रतिकार है जिसे मैं उस समृद्धि के रूप में कहता हूँ जिसे अन्य लोग वास्तव में समृद्धि का सुसमाचार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि भजनों में लोग भगवान को पुकारते हैं क्योंकि वे मुसीबत में हैं और वे भगवान को रोते हैं और उनकी स्तुति इस विलाप से भगवान के पास आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को विलाप और शोक मनाने की इजाजत नहीं देते। दुःख वास्तव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम दुःख और विलाप की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। और फिर मैं कहता हूँ आनंद मनाओ। इसलिए यदि आप किसी को दुःखी होते देखते हैं तो आप बस उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हें भगवान में आनंद मनाने की जरूरत है। हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। और फिर मैं कहता हूँ आनंद मनाओ। वास्तव में क्या फिलिप्पियों में उस पद का यही अर्थ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। विलाप की गहराई वह है जहां आत्मा की पुकार भगवान तक आती है और यहीं भगवान शामिल हो जाते हैं। वह हमारा उद्धार करता है, हमें बचाता है और फिर यही प्रशंसा का आधार है। अथ विलाप ही प्रशंसा का आधार है और विलाप ही हमारी प्रशंसा को समृद्ध रंग प्रदान करता है। यह सब केवल यह सुखद प्रशंसा नहीं है, बल्कि हम ईश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि हम गहराई से बाहर आए हैं। मुझे बस उस शब्द का उपयोग करने दीजिए। हम गहराई से बाहर आ गए हैं और इसलिए हम भगवान की स्तुति करते हैं क्योंकि अब हम अंधेरे से बाहर प्रकाश में आ गए हैं और हम देख सकते हैं। यह खूबसूरत है। बुराई पर ईश्वर की विजय बुराई है, दुनिया में बुराई है और बुराई पर विजय चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हमारी अधिकांश संस्कृति में बुराई के प्रति यही सहनशीलता देखता हूँ कि अगर तुम इसे सहन करो, इसे प्यार करो, इसे सिर पर थपथपाओ तो यह ठीक हो जाएगा। जबकि बाइबल ईश्वर को बुराई पर विजयी होने के रूप में चित्रित करती है, वह बुराई भजनकार पर हमला कर रही है और लोगों को उससे मुक्ति की आवश्यकता है। तो यह प्रशंसा का भी आधार बन जाता है, बुराई और उस तरह की चीजों पर ईश्वर की जीत। अब तारीफ की उम्मीद। जैसे ही मैं यह व्याख्यान समाप्त कर रहा था, कुछ क्लिक हुआ और मैंने इसे पहले नहीं देखा था। मैं कहना चाहता हूँ कि भजन 42 और 43 एक जोड़ी के रूप में शुरू होते हैं और फिर भजन 71-72 से ठीक पहले। लेकिन इसके अंत में आपके पास प्रशंसा की आशा होती है और प्रशंसा की यह आशा वास्तव में इस चीज की आत्मा को जीवंत और जीवंत कर देती है। यह बात भजन 42 और 43 में दोहराई गई है। यह परहेज 3 बार दोहराया गया है। तो यह खंडन भजन 42 और 43 को एक साथ बांधता है। यहाँ यह भजन 42 छंद 5-11 और फिर 43-5 है। वही परहेज दोहराया जाता है। हे मेरे प्राण, तू उदास क्यों है? मेरे अंदर इतनी अशांति क्यों है? अपनी आशा भगवान पर रखो। कैसे? क्यों? अपनी आशा परमेश्वर पर रखो, क्योंकि मैं अब भी उसकी स्तुति करूंगा। जब वह सोचने लगता है तो उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, मैं फिर से भगवान की स्तुति करने जा रहा हूँ। मैं निराश हो सकता हूँ, मेरी आत्मा उदास है और वे मेरे भीतर परेशान हैं, लेकिन मुझे यह आशा है कि मैं ईश्वर, अपने उद्धारकर्ता और अपने भगवान की स्तुति करूंगा। इस तरह किताब शुरू होती है। अपनी आशा परमेश्वर पर रखो, क्योंकि मैं अब भी उसकी स्तुति करूंगा। किताब का अंत कैसे होता है? भजन 71, भजन 72 से ठीक पहले यही अंत। यह भजन 71 श्लोक 5 से 6 और फिर 14 और 16 में कहता है, यह ऐसा कहता है, क्योंकि हे प्रभु प्रभु, तुम मेरी युवावस्था से ही मेरी आशा, मेरा विश्वास रहे हो। जन्म से ही मैंने तुम पर भरोसा किया है। तूने मुझे मेरी माता के गर्भ से उत्पन्न किया। मैं कभी गाऊंगा या मैं कभी तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मुझे हमेशा आशा रहेगी। मैं तुम्हारी और भी अधिक प्रशंसा करूंगा। मैं दिन भर तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन करता रहूंगा, यद्यपि मैं उसका माप नहीं जानता। और इसलिए यह एक सुंदर तरीका है कि यह आशा यहीं समाप्त हो जाती है। और अब मैं भजन 42 और स्तुति पर वापस आकर इस आखिरी बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा। मैं ईश्वर की इस संपूर्ण स्तुति के बारे में कहना चाहता हूं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं उस जुनून पर वापस आना चाहता हूं जो भजनकार में दिखता है, ईश्वर के लिए यह जुनून। और यह कहा गया है, मैं सोचता हूं, क्या कोई एडब्लू टोजर पढ़ता है? उसके पास एक किताब है, द परस्यूट ऑफ गॉड। और इस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर मुझे यकीन है कि इसे दोबारा मुद्रित किया गया है, और मुझे यकीन है कि यह शायद अब कवर पर नहीं है। यह वह हिरण है जो पानी की तलाश में है। और यदि आपने कभी रेगिस्तान में मनुष्यों सहित जानवरों को देखा है, तो उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। और इसलिए यहाँ भजन 42 में पुस्तक 2 इस प्रकार शुरू होती है, और मैं जो सुझाव देना चाहता हूँ वह यह है कि ये दो छंद वह आधार हैं जिस पर पूरी किताब भगवान की इस तरह की स्तुति में बनाई गई है। इसकी शुरुआत इस प्रकार है, और इसकी शुरुआत ईश्वर के प्रति इस जुनून से होती है। ईश्वर की खोज, जैसा कि एडब्ल्यू टोजर कहेंगे, जैसे हिरण पानी की धाराओं के लिए हांफता है, वैसे ही है भगवान, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए हांफती है। जैसे हिरण पानी के लिए छटपटाता है, वैसे ही मेरी आत्मा तुम्हारे लिए छटपटाती है। मेरी आत्मा भगवान की, जीवित भगवान की प्रबल कामना करती है। मैं अपने भगवान से कब मिलने जा सकता हूँ? इस श्रृंखला को देखने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर का जुनून आपकी आत्मा में हो और ईश्वर की स्तुति आपके होठों पर हो। हमने अभी अभी स्तोत्र की दो पुस्तकें लिखी हैं। अंदाजा लगाओ, 4 अन्य पुस्तकें हैं, भजन के माध्यम से भगवान की स्तुति और बाकी धर्म ग्रंथों के माध्यम से। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और प्रभु आपको आशीर्वाद दें। यह डॉक्टर टेड हिल्लेब्रांट और स्तोत्र की दूसरी पुस्तक में ईश्वर की स्तुति पर उनकी शिक्षा है। यह प्रशंसा के आह्वान, प्रशंसा का कारण, प्रशंसा कैसे करें, प्रशंसा की सामग्री और प्रशंसा के स्थान पर सत्र संख्या 4 है।